ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे संस्कार, कुछ ऐसी बातें अपने अंदर धारण करनी है और उसे निरंतर करते रहना है, क्योंकि वो करने का आदेश किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं भगवान ने दिया है। ये मेरी मत और तेरी मत नहीं है, माय ओपिनियन और योर ओपिनियन नहीं है, द ओपिनियन है। माय वे और योर वे नहीं है, द वे है। जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जो आज तक कोई नहीं बता पाया, किसी भी गुरु गोसाई, सन्यासी, उदासी, तपस्वी, संत, महात्मा, ज्योतिषी, तीर्थंकर, बुद्ध, पयंबर, पैगंबर, ईश्वर पुत्र, तीर्थंकर, बोधिसत्व, कोई भी अरिहंत, कोई भी अवतार, कोई भी युग पुरुष, धर्म पुरुष, धर्म स्थापक, धर्मावलंबी नहीं बता पाया। वो मार्ग भगवान आकर सिखाते हैं, वो नई आदतें, नई बातें, नए नियम और नए संस्कार और नई मर्यादाएं वो सिखाता है, क्योंकि वो इस संसार के चक्र से बाहर है। वही बता सकता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या, अनित्य क्या, सार क्या, असार क्या। और वो सत्य धर्म की स्थापना करने आया है, तो सत्य ज्ञान देता है। कल परसों मुरली में था, मैं जो सुनाता हूं जज करो, राइट है या रॉन्ग है। अगर वो राइट है तो अनराइटियस बातों को छोड़ दो। तो जब भगवान धरा पर आए, एक नए समाज का उसने निर्माण किया और उस नए समाज के हम हिस्से हैं। एक नई संस्कृति का उसने निर्माण किया, उस नई संस्कृति की आधारशिला हम हैं। तो इस यज्ञ में, इस ईश्वरीय यज्ञ में भगवान द्वारा प्रदत्त बताए हुए कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, जो हमको बार 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 करते रहना है। और जब वैसा हम करेंगे तो आत्मा एक नया जन्म लेगी, नए संस्कार धारण होंगे। तो आज हम इस ब्राह्मण जीवन के ऐसे 26 नियमों की चर्चा करेंगे, जिसका एक एक नियम किला है। एक दुर्ग है और मर्यादाएं ढाल है हमारी, ज्ञान तलवार है, योग कवच है, सिर पे ताज है पवित्रता का, हाथों में कड़ा है दृढ़ संकल्प का, उंगली पर चक्र है स्वदर्शन, पंख है उमंग उत्साह के, ड्रेस है स्वमान का, गले में माला है दिव्य गुणों की। ऐसे श्रृंगारित आत्माएं हम हैं। तिलक है आत्मस्मृति का, तख्त है परमात्म दिल तख्त। कैसा दृश्य है ये, इतना सारा ड्रेस लेके घूमना है दिन भर, बहुत ध्यानपूर्वक घूमना पड़ेगा, कहीं ताज खिसक ना जाए, तिलक मिट ना जाए, चक्र घूमता रहे, दृढ़ संकल्प हो, माला हो, ड्रेस हो। भगवान के दिल तख्त पर हम विराजमान हो, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान द्वारा बताए गए नियम कौन कौन से हैं और क्या हम करें कि उन नियमों पर पक्का हो जाए, हमारा जीवन उन नियमों के ऊपर आधारित हो। अब तक मनुष्य की मत मानी, अब तक गुरुओं के शरणों में गए, अब तक मनुष्यों ने जो कुछ कहा सब कुछ किया, पर परिणाम भटकन, सबसे पहला नियम अमृत वेला। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भाति भूतसंघम्। प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह उठकर स्मरण करना। तद्ब्रह्म निष्कलमहं, वो आत्मा मैं हूं निष्कलंक। न च भाति भूतसंघम्, ये शरीर और शरीर का ये जो संघ है, ये जो हड्डियां मांस का बना देह है, ये मैं नहीं हूं। मैं वो तत्व हूं। सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम, सच्चा सुख उस अवस्था में है। सच्चित सुखम परमहंस की जो गति है, तुरिया चेतना की चार अवस्थाएं है, स्वप्न जागृत सुषुप्ति और चौथी अवस्था है जिसका कोई नाम ही नहीं है, इसके लिए उसे द फोर्थ चौथा कहा गया है, जिसको संस्कृत में कहते हैं तुरिया, द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। वो परम अवस्था है जहां पर चेतना इस देह से, इस संसार से, संसार के चिंतन से ऊपर उठ जाती है। परमहंस गतिम तुरियम, सुबह सुबह उठना, इस संसार से परे निकल जाना, इस आवाज की दुनिया से परे निकल जाना। और ब्राह्मण जीवन में यदि कोई भी समस्या है, सभी समस्याओं का एकमात्र हल है, वो है अमृत वेला। इससे पूछू, उससे पूछू, ये मेरी समस्या है, वो मेरी समस्या है, मैं क्या करूं, किसी से कभी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता है। हमारे जीवन यदि प्रश्न है तो उत्तर है अमृत वेला। इससे उससे क्यों पूछ रहे हो, उससे पूछो जो सभी उत्तरों का सागर है। भगवान की महिमा हम सागर के रूप में बताते हैं, एक उसकी महिमा ये भी है। कौन सी? सभी उत्तरों का सागर, ओशन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस आंसर्स। उससे पूछो, वो बताएगा। एक बहुत अनन्य भाई थे कभी मधुबन में, साकार बाबा के समय के, ओम शांति भवन में उन्होंने बाबा से प्रश्न पूछा था। बाबा, मैं आपको इतने प्रश्न पूछता हूं अमृत वेला, आप एक भी उत्तर नहीं देते हो, क्यों? सारी सभा के सामने अव्यक्त बाप दादा को स्टेज पर, ओम शांति भवन, 80s में कहीं बाबा को प्रश्न पूछा था, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा? उसने पूछा, मैं इतने प्रश्न पूछता हूं, सारी यूनिलैटरल टॉक है, एक तरफा संवाद है, आप तो परम मौन धारण किए रहते हो, कुछ भी नहीं बोलते, मैं ही बोले जाता हूं, क्या उत्तर होगा वाका वाका? नहीं, बाबा का क्या उत्तर होगा? अव्यक्त बाप दादा, बाबा ने कहा इन्वर्टेड कॉमा, बच्चे बाप से प्रश्न पूछे और बाप उत्तर न दे, ये हो नहीं सकता, परंतु बच्चे के बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं मिलता। बुद्धि और चीजों में फंसी है, बुद्धि यहां वहां लगी हुई है, इस उसमें लगी हुई है। सब तरफ से अपनी बुद्धि को फ्री कर दे और एक बाप से लगा दे, क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने आप उत्तर आएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। संडे की मुरली शायद यहां हो चुकी है, दिव्य बुद्धि, क्या कहा था उसमें बाबा ने? नहीं हुई है? आपने कहा पहले हो जाती है? अच्छा, कहीं और होती है? अच्छा, पूछना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप टचिंग होगी। एक सूफी संत बहुत तकलीफों का सामना करता है। उसके शिष्य उसे कहते, तुम अल्लाह से कभी कुछ कहते क्यों नहीं कि आपकी तकलीफों को थोड़ा कम कर दे। उसका नाम लेते फिरते हो, उसका गुणगान करते फिरते हो, यहां वहां जाते हो घुमक्कड़, परंतु उससे भी तो कहो। वो कहता है, क्या उसे पता नहीं? क्या वो नहीं देख रहा? मैं क्यों उससे कुछ कहूं कि तुम मेरी तकलीफ दूर कर दो? उसे पता है, उसे सब कुछ पता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं, अगर चींटी को भी घुंघरू हो तो उस घुंघरू की आवाज भी भगवान तक पहुंचती है। तो क्या बाप अपने बच्चों के जीवन को नहीं जानता? तो सुबह सुबह उठना, ब्रह्मा बाबा के 33 वर्ष के पुरुषार्थी जीवन में शायद ही कोई दिन था जिसमें अमृत वेला मिस हुआ। अमृत वेला स्वयं में शक्ति भरनी है, स्पिरिचुअल पावर्स भरने हैं, भगवान से जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको फिर से जोड़ना है। और अमृत वेला जल्दी उठने की विधि है जल्दी सोना। सोने और रात के बीच में, नींद के बीच में, वर्तमान में एक नगर बसा हुआ है, डिजिटल नगरी, जो कि रात में प्रकट होती है, सोने से पहले एक्टिव हो जाती है। इसको छोड़ना पड़ेगा, कुछ चाहिए तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर अतीन्द्रिय सुख चाहिए तो इंद्रियों को, सुखों को छोड़ना पड़ेगा। इतने सस्ता नहीं है अतीन्द्रिय सुख जो अमृत वेला कोई भी उठ जाए और उसे मिल जाए। बहुमूल्य निधि है प्रभु प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद की प्राप्ति। तो विधि क्या है? जल्दी सोना और उठते ही शक्तिशाली संकल्प, उठते ही रोज नई नई ड्रिल्स करनी है। अगर अमृत वेला नींद में जाता है, अगर अमृत वेला झुटके आते हैं, और यदि अमृत वेला व्यर्थ चलता है, निगेटिव चलता है, सुस्ती आती है या उठते ही नहीं है, तो संगम युग की अमूल्य प्राप्ति हम गवा रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई शहर है जहां पर सुबह 4 और 5 के बीच में पानी आता है नल में, सारे दिन भर नहीं आता। जो गृहिणी उठ गई उसके पास पानी भर गया, और जो नहीं उठी वो सारे दिन भर बकेट लेकर पानी मांगते फिरती है पड़ोस से, पानी दे दो, पानी दे दो। जो यहां नहीं उठा वो भी मांगते फिरता है, सुख दे दो, शांति दे दो, हमको थोड़ी सकाश दे दो, हमारे घर में समस्याएं बहुत है, कुछ कर दो। शक्तिशाली दिन का आधार है शक्तिशाली अमृत वेला। यज्ञ में किताब है अमृत वेला, कितनों ने पढ़ी है? माताएं, बहुत कम। सबसे पहला काम अब ये करना है। अमृत वेले की बुक है, सॉफ्ट कॉपी भी है और हार्ड कॉपी भी है। पहले तो वो बुक लेना है और अगले 1 मास उसी बुक का अध्ययन करना है, जिसमें बाबा के चुने हुए चुनिंदा महावाक्य है अमृत वेले के ऊपर। अमृत वेले क्या समस्या है, क्या किया जाए, कैसे उसको शक्तिशाली बनाया जाए, नींद आती है, क्यों नींद आती है, जब तक वो ठीक नहीं होगा कितने लेक्चर सुन लो, कितने लेक्चर दे दो, कुछ फायदा नहीं। कितनी सेवाएं कर लो, क्योंकि प्रथम श्रीमत का ही उल्लंघन हो रहा है। फिर कितने भी कोर्स कराओ या कुछ भी कराओ, पहले तो इसको ठीक करना है, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में। अब तक जो हुआ वो हुआ, फुल स्टॉप। अब संकल्प करना है एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो। और यदि सच्ची लगन है तो नहीं होगा, चाहे कहीं पर भी हो। फिर और उसकी अवधि भी बढ़ानी है, ड्यूरेशन। पहले तो एक टाइम फिक्स करना है और फिर धीरे धीरे पीछे जाना है, इसको ठीक करना है किसी भी हालत में। भारत के चीफ जस्टिस कभी थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर। वो मधुबन आते थे पांडव भवन में, इंद्रप्रस्थ में रुकते थे। अभी अभी शरीर छोड़ा है 100 वर्ष की उम्र में। 80 से अधिक किताबें लिखी है लॉ पर, भारतीय संविधान पर। वो माउंट अबू आते थे बहुत पहले 80s में। उनकी आदत थी 2 बजे उठने की, और 2 बजे उठ के अपनी किताबें लिखते थे लॉ की। और जब भी मधुबन आते थे, और जब भी कल्चरल प्रोग्राम होता था, वो बराबर 9 बजे वहां से उठ के चले जाते थे। कहते मुझे माफ कर दो, मेरे सोने का टाइम हो गया। जगदीश भाई ने लिखा है वो एक लौकिक व्यक्ति, लौकिक काम करने के लिए अपने नियमों पर इतना पक्का है, तो हम ब्राह्मण इतने ढीले क्यों। और सब कुछ करने का आधार, अमृत वेले का आधार एक ही चीज है, संकल्प। बस मन में संकल्प चाहिए, अपने आप सब कुछ होगा। हमको याद है एक बार हम ट्रेन में कभी सफर कर रहे थे, और बहुत जल्दी जल्दी उठने की आदत थी, है अभी। तो हमने अलार्म लगाया, क्योंकि ट्रेन का सफर था रात का, और शायद अलार्म बजा नहीं बजा पता नहीं, पर जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा बाहर ट्रेन के दिन हो चुका है। तो इतना दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ अंदर कि अमृत वेला मिस हो गया। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, क्यों हुआ। हम बाबा से बातें कर रहे थे, ऐसे कैसे हो गया। बहुत उदास लग रहा था, और थोड़ी देर में ट्रेन चालू हो गई। ट्रेन रुकी थी किसी स्टेशन पर, और ट्रेन चालू हो गई, और ट्रेन जैसे आ गई गए हमने देखा बाहर अंधेरा है। तुरंत मोबाइल में देखा, उसमें 2 बज रहे थे। वो कोई स्टेशन था। एक भक्त रोज 5 बजे उठता था और भगवान की भक्ति करता था, एक दिन 6 बजे उठ गया। इतना रोया, सारे दिन भर रोते रहा, ये कैसे हो गया प्रभु, आज तक ऐसे हुआ नहीं, मेरी तो आदत है सुबह उठकर प्रभात सिमिर मन मोरे। इतना रोता है, बहुत दुखी रहता है। दूसरे दिन सुबह 5 बजे एक आवाज आती है, उठ। उसको लगता है स्वयं भगवान मुझे उठाने आया है। देखता है कौन है, और पूछता है तुम कौन हो, तो कहता है मैं शैतान हूं। तुम और उठाने, तुम्हारा काम तो सुलाना है। वो कहता है शैतान कि मैंने कल तुमको सुला दिया था, तुम इतना रोए। मुझे तो डर था अगर तुम्हारे रोने की आवाज भगवान तक पहुंच गई तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैं खुद आ गया हूं तुमको आज उठाने के लिए। उठ जाओ। सुबह सुबह उठने का अभ्यास। यदि नींद आती है तो कुछ पढ़ाई करना, थोड़ी सी मुरली पढ़ लेना, थोड़े से महावाक्य पढ़ लेना, कोई अव्यक्त मुरली पढ़ लेना। फिर भी नींद आती है तो चलते फिरते करो। फिर भी नींद आती है, पहले एक्सरसाइज करो, थोड़ा प्राणायाम करो, फिर भी नींद आती है, कुछ बाबा के महावाक्य सुनो, बाबा की आवाज सुनो और वीडियोस देखो, वो नहीं है ऑडियो सुनो, कुछ ऐसा करो कि जिससे नींद ना आए। क्योंकि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा नींद कब आती है? एक अमृत वेला, दूसरा एक है अमृत वेला सोने वाले की लिस्ट, दूसरा है मुरली में सोने वालों की लिस्ट, तीसरे है क्लास में सोने वालों की लिस्ट, कोई दूसरा क्लास चालू है, और चौथी डिस्कशन चालू है ज्ञान का, सब लोग बैठ के उसमें भी सो रहे हैं। नींद का महाप्रकोप, भयंकर प्रकोप। एक भाई बीच में आया था, शांति स्तंभ पर बैठा था, शांति स्तंभ पांडव भवन, और इतनी नींद, पूरा नीचे झुक रहा था। उसको कहा उठो, क्या कर रहे हो? वो कहता था सकाश दे रहा हूं धरती को, धरती को नजदीक से सकाश दे रहा हूं। हमारी एक डॉक्टर बहन है, वो आती रहती है बीच में, और लोग जब मधुबन में आते हैं तो एकदम नशा चढ़ जाता है, क्या करूं और क्या नहीं, सीधा 2 बजे उधर पता नहीं करते भी नहीं अमृत वेला या क्या करते, पर मधुबन में आने के बाद में भयंकर नशा, सुबह सुबह उठकर कुटिया में चली गई 2 बजे, 2 बजे कुटिया में बैठी, और जब 5 मिनट के बाद ऐसे करके देखा घड़ी कितनी है, 5 मिनट के बाद, तब तक 5 बज चुके थे, बीच में क्या हुआ पता ही नहीं, इस संसार से परे। और जैसे ही देखा 5, उसको चिंता हुई, पीछे सोफा है और सोफा पे कुछ लोग बैठे हैं, उन्होंने देख लिया होगा मुझे नींद करते हुए, सबसे ज्यादा टेंशन तो इसका है। अमृत वेला अगर नींद आ गई तो व्यक्ति सबसे पहले क्या देखता है, झुटका लगने के बाद, किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा है तो सुरक्षित है, हाँ सब ठीक है। उसको तो पता ही नहीं 3 घंटा क्या किधर डोली होगी और क्या कुछ किया होगा, कुछ खबर नहीं। अभी अभी देखा 2 बज रहे थे, नेक्स्ट देखा तो 5 थे सीधा, 5 मिनट में 3 घंटा गुजर गए। और सबसे बड़ी चिंता हुई कि पीछे जो बैठे हैं सोफा पे, उन्होंने देख लिया होगा। पीछे मुड़ के देखा, पीछे 5 माताएं बैठी थी सोफा पर, सभी की सभी सो रही थी, तब कहीं जाके चैन हुआ। ये अभी ठीक है, इज्जत का सवाल है, हम योगी है ना, और कोई देख ले कि तुम तो सो रहे थे, ब्राह्मण समाज में हमारा तो कुछ रहा ही नहीं। अमृत वेला, नींद, हो सकता है शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, एक हो सकता है शरीर की कोई बीमारी है, ब्लड टेस्ट कराओ, थायराइड हो या कुछ और हो, कुछ विटामिन की कमी हो, कंप्लीट ब्लड चेकअप हो सकता है। सारे दिन भर टाइम ही नहीं है रेस्ट का, सुबह से लेके लगे हुए रात को 11 बजे तक, फिर कहां से उठेंगे, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, हो सकता है रात को बहुत लेट सो रहे हैं, सेवाएं पूरी हो रही है 10 बजे पर सोने का समय है 11:30, क्यों? डिजिटल आकर्षण, डिजिटल नगरी की अनजान गलियों में भटकते हैं, इसके लिए लेट हो रहा है। दूसरे सोने वाले मुरली में सोने वाले हैं, मनोहर इंदिरा दादी मुरली सुना रही थी मेडिटेशन हॉल में, सब माताएं सो रही थी, दादी ने कहा सब खड़ी हो जाओ, पीछे जो दीवार है ना वहां जाके खड़ी हो जाओ, दीवार के पास लग के। पर माताएं ऐसी भयंकर महारथी थी कि खड़े खड़े सोना चालू कर दिया, निद्रा लोक। एक माता जगदीश भाई के पास आई और कहने लगी, भाई साहब मुझे ऐसा अनुभव होता है अमृत वेला कि उसमें मुझे ऐसा लगता है मैं परम धाम को भी पार कर गई हूं, वहां पे मुझे ऐसा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है कि बस वहां पे कुछ नहीं, ना ब्रह्म तत्व है, शिव बाबा नहीं, कुछ नहीं, ये क्या है, मुझे कौन से साक्षात्कार हो रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा ये निद्रा लोक है, परम धाम स्थूल वचन सूक्ष्म वतन परमधाम, उसके ऊपर क्या है निद्रा लोक, वहां पर ना शिव बाबा दिखाई देता है कुछ नहीं, एकदम उपराम अवस्था, भगवान से भी वैराग, शिव बाबा से वैराग, सूक्ष्म वतन परमधाम से वैराग, एकदम उसके भी ऊपर। अमृत वेला अलर्ट होके बैठना है। बाबा ने कहा अरे बाप आया है तुमको मिलने, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो उसको। अगर नींद आती है तो क्या करो, मुरली में क्या आता है, आंखों में क्या डाल दो, तेल डाल दो, ऐसा मुरलियों में आता है ना, कारण ढूंढो क्यों आती है नींद, कम हो रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। परमात्म प्रेम ऐसा अलार्म है जो अपने आप अमृत वेला उठाएगा, कभी स्लोगन था, किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं अगर देखा जाए तो, क्योंकि अलार्म भी बहुत धोखा देते। एक भाई रोज, एक कुमार रोज अमृत वेला अलार्म लगाता था 3:30 बजे 4:15 बजे, पर जैसे ही अलार्म बजता था हाथ अपने आप ऑटोमेटिक हृदय से बाहर निकलता था और अलार्म को बंद कर देता था। सारे प्रयत्न कर लिए क्या करे, अब उसने सोचा और एक प्रयत्न करता हूं, अलार्म घड़ी को बाजू में जो खटिया थी उसके नीचे रख दिया ताकि मैं उठूंगा फिर घुसूंगा नीचे फिर उसको बंद करूंगा, तब तक तो नींद चली जाएगी। दूसरे दिन जोर से अलार्म बजा, उसने हाथ किया पर घड़ी वहां थी नहीं, फिर उठा फिर ढूंढा फिर याद आया घड़ी वो खटिया के नीचे रखी है एकदम, फिर घुसा अंदर और घड़ी बंद की और वहीं सो गया। साइंस के साधन धोखा दे सकते हैं, ये हमारी मन की वृत्ति हमें धोखा दे देती है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे अमृत वेला मिस ना हो और जो टाइमिंग है वो फिक्स हो जाए और जो क्वालिटी है वो पावरफुल हो जाए, नींद का लेश मात्र भी प्रभाव ना हो, आंखें खुली हो, बंद नहीं। कितने सारे काम करने हैं, बाबा से शक्तियां लेनी है, दृष्टि लेनी है, वरदान लेने हैं, वरदानी हाथ सिर पे रखना है। लास्ट संडे की मुरली में था, बाप राइट हैंड बच्चों से हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक करना है उससे, सूक्ष्म वतन में सारे संबंध निभाने हैं, परमधाम में भिन्न भिन्न अवस्थाओं की अनुभूति करनी है, सतयुग का अनुभव करना है, पूज्य स्वरूप का अनुभव करना है, संगम युगी प्राप्तियों का अनुभव करना है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, भक्तों की पुकार सुननी है, एक एक आत्मा के पास जाकर उन्हें सकाश देनी है, कितने सारे काम करने हैं। और हम यदि सो रहे हैं, यदि हमारा अमृत वेला रोज ही मिस हो रहा है, रोज साधारण हो रहा है या व्यर्थ का हो रहा है, तो क्या कहेंगे, अवस्था कैसी बनेगी शक्तिशाली। तो सबसे पहला नियम क्या है, अमृत वेला, उसके लिए बताया वो जो किताब है, उस किताब को ढूंढो। कोई मधुबन गया है तो उसको कहो हमारे लिए लेके आए, और उस किताब को दिन में 2 बार पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है, जब भी समय मिला पढ़ना है। अमृत वेले के बारे में पहले अपने नॉलेज को बढ़ाना है। और कहीं पर भी करो, और सुबह जो ड्रिल सुनाई 24 घंटे में 1 बार मधुबन की यात्रा करनी है वो भी तो करनी है अमृत वेला, इतने काम है। दूसरा नियम ब्रह्मचर्य, दूसरी मर्यादा कहो या नियम कहो है ब्रह्मचर्य। मैं आत्मा हूं और ये सब आत्माएं हैं, और ये जो शरीर है और ये जो दिखाई दे रहा है ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि सारे विकारों की जड़ काम, काम चीत बनना अर्थात ब्रह्मचर्य में स्थित होना, और ब्रह्मचर्य नींव है पवित्रता की। संपूर्ण पवित्रता यदि इमारत है उसमें तो बहुत सारी बातें आती है, परंतु उसका आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात वो स्थिति जहां हम ब्रह्म में हैं, जो परमधाम की स्थिति है वो ब्रह्मचर्य है। ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्मचर्य। संपूर्ण कर्मेंद्रियों का स्वामी बन जाना अर्थात ब्रह्मचर्य। संपूर्ण काम जीत बन जाना अर्थात ब्रह्मचर्य। सवात्माएं हैं, देह के आकर्षण से मुक्त हो जाना अर्थात ब्रह्मचर्य। नहीं तो ये देह पागल करके रखा है इस शरीर में आत्माओं को। सुबह भी कहा था, सारा संसार इस समय देह के इर्द गिर्द घूमता है। जितनी आत्मा पवित्र उतनी वो शक्तिशाली है। और यदि जीवन में जरा भी दुख है, ब्राह्मण जीवन में, जरूर ब्रह्मचर्य का और पवित्रता का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि सुख और शांति ऐसे दो बच्चे हैं जो ब्रह्मचर्य की गोद में पलते हैं। यदि जीवन में अशांति है और दुख है जरा भी लेश मात्र, जरूर कहीं ना कहीं प्यूरिटी कम है। जरूर कोई ना कोई देहधारी है जिसका चिंतन चल रहा है, जिसकी याद आती है और जो खींचता है। जरूर कोई ना कोई मोह है। जगदीश भाई ये कहानी सुनाते थे एक कन्या की, जो कि पनघट पर कुआ है, वहां पर पानी भर रही है। एक युवक वहां आता है, कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी दो। वो कन्या कहती है पानी मैं दूंगी, पर एक शर्त है, अंग से अंग ना लगे तो मैं पानी दूंगी। वो कहता है शर्त मंजूर है, मान ली वादा। और वो उसे पानी देती है और वो पानी पीता है और वो युवक चला जाता है। कुछ समय के बाद उन दोनों को पता नहीं रहता, पर उन दोनों के मां बाप दोनों की शादी कर देते हैं। उस कन्या को यह नहीं पता कि मेरी शादी इसके साथ हुई है, और उसको यह नहीं पता कि इसके साथ हुई है। और शादी अभी हुई है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। और जैसे ही वो कन्या उस कुमार को देखती है और वो कुमार उस कन्या को देखता है, वो कन्या कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग न लगे, पवित्रता अर्थात अनटच्ड, इसे कोई हाथ न लगाए। बाबा से अधिक हम किसी से भी ज्यादा प्यार ना करें, और दूसरे बाबा से ज्यादा हमसे प्यार ना करें। ये दो बातें याद रखनी। हम बाबा से ज्यादा किसी से भी प्यार ना करें, और दूसरे हमसे बाबा से ज्यादा प्यार ना करें। इस ब्राह्मण परिवार में यदि हम किसी और को अपने आप में फंसाते हैं, अपने शरीर में, हम उसको नीचे गिरा रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, संकल्प करना पड़ेगा, होगा, भगवान कह रहा है होगा। ऋषि मुनि तपस्वियों ने तो कहा असंभव है, शास्त्रों में लिखा है समुद्र को पिया जा सकता है पर काम को वश में नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में लिखा है पूरा पर्वत उठाया जा सकता है पर काम को वश में करना असंभव है। शास्त्रों में लिखा है कोई कोबरा काट दे तो व्यक्ति बच सकता है पर काम के प्रभाव से नहीं बच सकता। ऐसी ऐसी बातें लिखी है। योगियों को गिरते हुए दिखाया है, पतन दिखाया है बड़े बड़े योगियों को, और भगवान यहां आकर कहता है, क्या वो कारण था कि जब भगवान पहली बार धरती पर आया सिंध हैदराबाद, इतनी भोली भोली माताएं और इतनी बहनें और इतने सब ने तुरंत पवित्रता को धारण कर लिया। वो आया सिंध प्रांत में जहां कर सारे लोग विलासी थे, सिंध अर्थात वो सारे लोग वहां के शौकीन थे, जेवर वस्त्र आभूषण, वहां पर भक्ति को भक्ति तो लेश मात्र थी। ऐसे प्रांत में वो आया और वहां की सारी माताएं और सारी बहनों ने तुरंत पवित्रता धारण कर ली। ऐसा उसने क्या बता दिया? उसने केवल एक छोटी सी बात बता दी जो आज तक किसी ने नहीं कही थी, और वो ये बात थी कि तुम देवता थे, तुम में संपूर्ण पवित्रता थी। कभी ये एक ऐसी बात बता दी जो किसी ने नहीं बताई थी। आज तक हमने केवल ये सुना था कि देवताओं की पूजा करनी है, महिमा करनी है, गुणगान करना है, बस। पर ये बताना कि तुम ही थे, ये किसी ने नहीं बताया, इसलिए वो आसान हो गया। इसलिए इस ड्रिल की बार बार आवश्यकता है पांच स्वरूपों की, कि मैं कौन? संपूर्ण पवित्र देवता। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ और देखो कि हम भी ऐसा बनने वाले हैं। उन संस्कारों को कैच करना है जो खो गए 5000 साल में। तो दूसरा नियम, दूसरी मर्यादा, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता। उसके लिए ऐसी वो सारी चीजें जो ब्रह्मचर्य को भंग करती है, उस सबको दूर कर देना पड़ेगा। वो सारे ट्रिगर्स, चित्र, पोस्टर, टीवी, मोबाइल, वीडियो, यूट्यूब, क्या कुछ नहीं है संसार में, सब काम की हवाएं हैं, उन सब से अपने आप को अलग कर देना पड़ेगा। केवल उन्हीं चीजों का चिंतन करना, मनन करना, जो आत्मा की पवित्रता को बढ़ाए। ढूंढना है कौन से वो कारण है जो स्वप्न में पवित्रता खंडित होती है। जरूर कुछ ना कुछ दिन भर किया होगा, सोचा होगा, देखा होगा, सुना होगा। और एक बात, जहां पर दमन होगा वहां पर कभी भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं होगा। संसार में दो मार्ग है, एक है भोग का मार्ग, एक है दमन का मार्ग। दबा दो उसको, काम महाशत्रु है, दबा दो उसको। दोनों ही मार्ग लोगों ने किए पर दोनों ही असफल रहे। योगी सन्यासी जंगलों में चले गए, वहां तपस्या करने लगे, अप्सराओं ने उनको छोड़ा नहीं पर स्वप्न में भी। वो कौन थी अप्सराएं? अप्सराएं को क्या पड़ी है ऊपर से आने की? वो मन का ही प्रोजेक्शन था, मन की ही दमित वासनाएं थी जो बाहर निकल के अप्सराओं के रूप में दिखती थी योगियों को। ऐसी कोई अप्सरा कहीं से कहीं नहीं आती, सप्रेस्ड सप्रेशन था वो। और ये दो मार्ग संसार में, दमन और भोग। भगवान ने एक तीसरा मार्ग बताया जो बीच का है और जिसका नाम है ज्ञानमयी प्रेममयी समझ। जब पता चल गया ये व्यर्थ है तो अपने आप उसका त्याग हो जाता है, फिर दमन करने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे ही हम ज्ञान में आए, इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर का खाते हैं, होटल का, रेस्टोरेंट का, है कोई? है क्या कोई? कुछ बहुत कम। पर जैसे ही हम ज्ञान में आए, बाहर का खाना क्यों बंद कर दिया? क्यों? जैसे ही पता चल गया ये व्यर्थ है, तुरंत हमने देखा है कि मैक्सिमम 99% बीके इस नियम को बहुत सहजता से फॉलो करते। जिस दिन ज्ञान में आए उस दिन सब बाहर का बंद कर देते। क्यों? और विकारों को छोड़ने के लिए इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि मन जिसे समझ लेता है ये व्यर्थ है, अपने आप त्याग हो जाता है उसका। ये मेरा भोजन है ही नहीं। उसी तरह काम और काम विकार, ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। काम विकार उस व्यक्ति की तरह है, हम सड़क से जा रहे हैं, अचानक बीच में से आ जाता है, हमें उससे मिलना भी नहीं, उससे नफरत है। हम घूम रहे हैं, किसी दुकान में कुछ खरीद रहे हैं और वहां से पीछे से देखता है अचानक। उस अपरिचित अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह है जो अचानक आ जाता है कहीं से भी। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक विचार, अचानक संकल्प, और जब ऐसा हो तो सोचना है ये कहां से आ रहा है, क्या कारण है, जरूर कुछ तो देखा है, वहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात संपूर्ण पवित्रता अर्थात वह सारी बातें जो आत्मा को अपवित्रता और शरीर की ओर खींचती है, संसार के तथाकथित लव और रोमांस, जो समझते हैं कि बहुत हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो प्रेम वास्तव में 90% जिस्मानी ही होता है, जिसको वो अपने अलौकिक प्रेम का नाम देते हैं संसार में। किसी की किसी के साथ शादी होने वाली है, बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, वो जो भाई है उसका एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर कट गए, अब शादी करती है क्या वो, अब कहां गया प्यार। पहले तो कहते थे हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, संसार का प्यार जिस्मानी है। हमको याद है कुछ समय पहले हॉस्पिटल में एक माउंट आबू टूरिस्ट प्लेस है, घूमने फिरने शादी के बाद एक युगल आए थे जवान, और वो अनादरा पे वो मोबाइल से फोटो लेने के चक्कर में पीछे 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 और गिर गई वो उसकी पत्नी, हॉस्पिटल लेके आए डेड, मर चुकी थी। वो भाई इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, हॉस्पिटल की सीढ़ियों के बाहर बैठे बैठे ऐसा जोर जोर से रो रहा था। और कुछ समय के बाद एक दो मास में ही वो इनविटेशन लेके आ गया ओपीडी में शादी का, शादी में डॉक्टर साहब जरूर आना, दूसरी शादी का कौन सा प्यार और कैसा प्यार, जिसे व्यक्ति कहता है मेरा बहुत प्यार है तुमसे, वो शरीर का ही है। रियल लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी, वास्तविक जो प्रेम है उसे तो शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं, और वो केवल एक परमात्मा से हो सकता है। बस इसके लिए संसार में जो तथाकथित लवर्स और तथाकथित उपन्यास और लव स्टोरीज और रोमांस, ये केवल और केवल क्षणिक आकर्षण मात्र है। चाणक्य चंद्रगुप्त को समझाता है, चंद्रगुप्त अभी युवा हो गया है, चंद्रगुप्त को प्यार हो गया है वो धुर्धरा से, जो धननंद की बेटी है, और वो हलचल में है। चाणक्य कहता है मैंने तुम्हें इसकी शिक्षा कभी दी नहीं, मुझसे गलती हो गई, सब कुछ मैंने तुमको सिखाया, ये एक संवेदनशील मुद्दा था जो मैं तुझे नहीं सिखा पाया, अब मैं तुझे सिखाता हूं। सुन, तुम समझ रहे होगे तुम्हारे साथ कुछ बहुत विलक्षण हो रहा है, पहला पहला प्यार, हलचल हो रही है मन में, उमंगे उठ रही है, भावनाएं उमड़ रही है, सोच रहा है हाथ पकड़ के घूम रहा हूं किसी के साथ, ये केवल और केवल क्षणिक मन का आकर्षण मात्र है। बस क्योंकि प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है, संसार में हजारों और लाखों में कोई एक होगा, कोई एक युगल ऐसे होंगे जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं वास्तव में। बाकी तो सुर नर मुनि सबकी हरीति स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सुर नर मुनि सबकी एक ही रीति है, क्या? स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति, स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। एक युवक अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरु कहता है संसार के सभी प्रेम मिथ्या है। वो कहता है हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी का जितना मुझसे प्यार है उतना तो किसी का कोई पत्नी ने अपने पति से प्यार नहीं, वो मेरे लिए सब कुछ करने को राजी और आप कहते हो संसार का प्यार मिथ्या है, झूठ बोलते हो। गुरु कहता है चलो एक काम करते हैं, तुम अभी घर जाओ और ये जो जड़ी बूटी मैं तुमको दे रहा हूं वो खा लेना, जैसे खाओगे बेहोश होके गिर पड़ोगे। परंतु एक विचित्र मुद्रा उसको सिखाते हैं, आसन, इधर से पैर और उधर से पैर, और वहां जाके उसमें पहले बैठना खा के और फिर देखना क्या होता है। वो जाता है, वो आसन, वो खाता है, आसन लगाता है और लेट जाता है, और उसकी पत्नी आती है, बात नहीं कर रहा है, नाड़ी भी बंद, मृत्यु हो गई, बहुत रोना धोना चालू है। आस पड़ोस वाले आ गए, सब लोग रो रहे हैं और वो सुन रहा है अंदर ही अंदर। और फिर उसको अब बाहर निकालना है घर से, डेड बॉडी है, शमशान घाट ले जा रहा है, पर वो दरवाजा बहुत छोटा है तो उसको निकालने की कोशिश करते क्योंकि वो आड़ा टेढ़ा अष्टवक्र जैसा, तो लोग कहते हैं दरवाजा को तोड़ो क्योंकि बॉडी निकल नहीं रही है उसमें से। तो पत्नी कहती है ऐसे कैसे दरवाजे को तोड़ो, इतना चंदन का दरवाजा है इसको कैसे तोड़ो, फिर निकलेगी कैसी बॉडी। वो कहती अब ये तो मर गया, इसके पांव काटो और निकालो इसको बाहर। तब तक वो जाग जाता है और सीधा वन की तरफ। तोड़ निभाना एक बात है, पर बाबा ने कहा सच्चा प्यार एक मुझसे रखो बस, और किसी से भी नहीं। संसार से सौतेला प्यार रखना, ऊपर ऊपर से हाथ घुमा देना संसार के, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दिल का प्यार, जिगरी प्यार एक बाप से हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार तुमको खींचे नहीं। प्यार खींचता है अर्थात प्रभु प्रेम कम है। आत्मा की प्यास प्रेम की है, अगर उसको परमात्मा प्रेम नहीं दिया गया तो देहधारियों में जाएगा। प्रेम दो, अटेंशन दो, केयर करो, मुझे कुछ दो, कोई कंधा चाहिए उसके ऊपर सिर रख कर रोने के लिए, कोई यहां हाथ रख दे तो आह बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरा नियम ब्रह्मचर्य, तीसरा सेवा केंद्र का वायुमंडल। ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य, सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर। सेवा केंद्र का जो वायुमंडल है वो हमें शक्तिशाली बनाना है। यदि यहां आकर हम व्यर्थ की बातें करते, संसार की बातें करते, संसार का चिंतन करता है, बिजनेस की बातें करते, तो यहां का वायुमंडल हम खराब कर रहे हैं। ये कौन सा स्थान है, ये कौन सी जगह है, स्वयं भगवान की भूमि है ये। एक एक सेवा केंद्र अर्थात मिनी मधुबन है, इन दीवारों पर पवित्रता है। और यहां जो रहती है वो संसार की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ आत्मा है जिन्हें स्वयं भगवान ने चुना है। तो तीसरा है इस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, यहां पर विघ्न रूप ना बनना। एक भाई का फोन आया था, वो कहने लगा हम क्या करें बताओ, हमारे सेंटर पर जैसे ही मुरली खत्म होती है तीन चार भाई लोग हैं वो बैठते हैं और पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, वो क्या करें बोलो। मुरली क्लास होने के बाद में सेंटर पर बैठकर किस पार्टी ने क्या किया और क्या कर रही है इसकी चर्चा होती है वहां पर। सेंटर पॉलिटिक्स की चर्चा करने का स्थान नहीं है, ना ही संसार के बिजनेस करने का स्थान है। यहां पर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। वो छोड़कर हम अगर ये सब कर रहे हैं तो हम विघ्न रूप है, इसके लिए यहाँ का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है उसके लिए और एक चीज है, यहाँ आना पड़ेगा। आजकल मुरली सब अवेलेबल है मोबाइल पर, इसके लिए कई लोग सेंटर पर आना ही बंद कर दिया है, कार में चलते चलते सुनते हैं या मोबाइल में पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं। पर ये जो वायुमंडल है ये सेंटर एक किला है, इसके अंदर आकर यहां बैठकर मुरली सुनना, उस वाइब्रेशंस में स्वयं को स्थित करना है जिसमें आत्मा पावरफुल होगी। तो सेंटर एटमॉस्फियर पावरफुल हो, सेंटर एटमॉस्फियर पावरफुल करना हो और करना है, और कोई भी विघ्न यहां ना आए, चाहे अंदर रहने वाले या बाहर से आने वाले कोई भी, ये सब के लिए नियम है। यहां आते हैं और यहां व्यर्थ के संकल्प, नेगेटिव संकल्प या ईर्ष्या या द्वेष या परचिंतन या परमत, यहां बैठकर उस सेंटर पर क्या क्या चालू है उसकी चर्चा, वो बहन ने ऐसा किया, वो भाई ने ऐसा किया, एक दूसरे की ग्लानि करना। एक बहुत खराब बात है जो आप सबको बताएंगे, ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। रमेश भाई साहब ने कभी बताई थी, शिवरात्रि का प्रोग्राम था, एक सेवा केंद्र के भाई बहने गवर्नर के पास गए, सेक्रेटरी से मिले और सेक्रेटरी से कहा आप हमारे यहां प्रोग्राम के लिए आइए, शिवरात्रि का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे, गवर्नर के सेक्रेटरी ने कहा। एक दूसरे सेंटर वाले उनके पास पहुंचे दूसरे दिन, उन्होंने कहा हमारे यहां शिवरात्रि का प्रोग्राम है ब्रह्मा कुमारी का, आप आइए। तो उन्होंने कहा हम तो ऑलरेडी आ रहे हैं, अब उनको क्या पता दो है। तो उन्होंने कहा हम तो आ रहे हैं। तो उन्होंने कहां आ रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा ये है यहां जा रहे हम। उन्होंने कहा यहां नहीं जाना, ये अच्छे लोग नहीं है, हमारे यहां आओ। सामने वाले को क्या पता ये सेवा है या डिसर्विस। उर्दू में कहते हैं अना की जंग में हार मान जाओ, अना अर्थात ईगो, ईगो अहंकार का युद्ध जहां है वहां पर हार मान लो। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है, इसलिए हार मान लो। हार में ही जीत है अहंकार के युद्ध में, चाहे व्यक्ति व्यक्ति में युद्ध है, घर में पति पत्नी में युद्ध चल रहा है अहंकार का युद्ध है, कंपनी कंपनी में युद्ध चल रहा है अहंकार का युद्ध है, ऑफिस ऑफिस में युद्ध चल रहा है अहंकार का युद्ध है, एक ही सेवा केंद्र में दो बहने और दो भाइयों का युद्ध चल रहा है अहंकार का युद्ध है। हार मान जाओ, अना की जंग में हार मान लेना। तो सेवा केंद्र का वायुमंडल शुद्ध हो, ईर्ष्या द्वेष जेलसी परचिंतन टांग खींचना षड्यंत्र करना ये सब हमें नहीं करना है। भगवान का घर है, इसके वायुमंडल को हमें शक्तिशाली बनाना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द गुड ऑफ मैनी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनी, हमने ये जन्म लिया है। तो तीसरी मर्यादा शुद्ध वायुमंडल, शक्तिशाली वायुमंडल, सेंटर का वायुमंडल। उसके बाद में चौथा डी, डी अर्थात ड्रेस कोड, किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, कपड़े कैसे होने चाहिए हमारे। अब ये मत बोल देना व्हाइट, कैसे होने चाहिए कैसे होने चाहिए, कैसे मर्यादा वाले कैसे होने चाहिए हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए जी, साफ सुथरे और इस्लाम धर्म में बहनों के लिए कहा जाता है पांच नियम है ड्रेस के बारे में, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए भी लागू हो सकते हैं। सबसे पहला नियम, ड्रेस टाइट ना हो। पहला नियम क्या है ड्रेस का, टाइट ना हो, ढीला हो। जितने भी धर्म स्थापक है उनका ड्रेस कैसा दिखाया है, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी, ढीला है। योगी का ड्रेस ढीला होता है, जो टाइट ड्रेस है वो योगी का ड्रेस नहीं है। ये नियम बताया है स्त्रियों के लिए, पहला। दूसरा, पारदर्शी ना हो, ट्रांसपेरेंट, जिसमें अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहा है, ऐसा ड्रेस ना हो। तीसरा नियम, पुरुषों के जैसा ना हो। यह स्त्रियों के लिए नियम है इस्लाम धर्म में। चौथा, चेहरा, हाथ और पैर छोड़ के सब कुछ ढका हो। और पांचवा, भड़काऊ ना हो। धर्मों में ये सब बातें हैं, तो हमारा ड्रेस ऐसा ना हो कि उस ड्रेस देखकर हम पे कोई फिदा हो जाए और पागल हो जाए हमारे पीछे, या आकर कहे तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छा दिखते हो, अच्छा दिखती हो। हमारे ड्रेस साफ हो, शरीर ढका हुआ हो, कोई देखे तो उसे लगे देवी है साक्षात। संसार का फैशन, फैशन ब्राह्मणों में भी बहुत फैशन है, वाइट में भी फैशन है। हम वहां कुटिया में बैठते हैं सुबह, अचानक कोई भाई या बहन आ जाती है इतना सेंट कि सीधा, दो तीन भाई परमधाम में जो पहुंच गए थे वहां से सीधा नीचे गिरते हैं, इतना डिओडोरेंट और इतना वो सेंट होता है। सुबह सुबह वो भी अमृत वेला लगा के कुटिया में प्रवेश। कितने लोग बेचारे फ्रैक्चर हो जाते होंगे गिर के ऊपर से। टैटू, टैटू पाउडर, डाई, डाई करते हैं, सेंट, डाई, ज्वेलरी, रंग बिरंगे कपड़े, भड़काऊ कपड़े। बाबा ने कहा है तुमने कफन ओढ़ रखा है, ये संसार विनाश होने वाला है। ये संसार की फैशन और चमक दमक, इससे क्या लेना देना। दादी प्रकाशमणि जी के जीवन में उदाहरण है। दादी प्रकाशमणि को राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली, और डॉक्टरेट की डिग्री जब मिलती है तो ऐसा वो रहता है एक स्क्रोल और वो कोट पहन के, तो वो दादी ने पहना और वो स्क्रोल लिया और बाबा के पास गई और बाबा को कहा, अव्यक्त बाप दादा मेरी हिस्ट्री, ओम शांति भवन, बाबा ये देखो मुझे ये मिला है। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या ब्रह्मा कुमारी से भी बड़ी कोई डिग्री है। सफेद साड़ी पहनी हो, हाथ में मुरली, बाल खुले हो, तुम हो राज ऋषि, मुरलियों में आया है ये वाक्य। हमारे वस्त्र शालीन हो, शिष्टाचार पूर्वक हो, फटे पुराने ना हो, पुराने हो परंतु गंदे ना हो, स्वच्छ हो, और कोई हमको देखे तो उसके अंदर दिव्यता के भाव जागृत हो। ये वस्त्रों का नियम है, और वैसे ही पुरुषों के लिए भी, भाइयों के लिए भी। स्वामी विवेकानंद अपना भाषण पूरा करके नीचे उतर रहे थे शिकागो, एक महिला युवा एकदम नजदीक आ गई और कहने लगी, बस मुझे ऐसे ही पति की तलाश थी, आप जैसे हैंडसम, विल यू मैरी मी। और उसने एक चीज और जोड़ दी कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बिल्कुल आप जैसा ही हो, इसके लिए मैं चाहती हूं कि आप मुझसे शादी करो ताकि मेरा पुत्र बिल्कुल आप जैसा हो। वो कहते, तुम मुझे ही अपना पुत्र बना लो ना, इतनी लंबी प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा। तो कोई हमारे वस्त्रों के कारण हमारी तरफ आकर्षित ना हो। संसार में जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसका एक कारण वस्त्र है, अंग प्रदर्शन है। उसके बाद में अगला ई, इकोनॉमी। हमारा नियम है इकोनॉमी का। ड्रेस में और एक चीज है बैच। कई लोगों को डर लगता है बैच लगाने से, इतना छोटा बैच वो बटन वाला यहां लगाते हैं ताकि उसमें दोनों हो जाए, किसी ने देखा भी नहीं। अगर किसी ने पूछा तुम्हारा बैच तो ये क्या है, इतनू सा। बाबा ने कहा ये बैच तुम्हारी गीता है, ये बैच शास्त्र है, ये बैच से सेवा होगी। हमको याद है जब हम पीजी कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी, उसमें जो हमारा इंटरव्यू था, वाइवा कहते हैं उसको, तीन चार एग्जामिनर बैठते हैं और सामने एक कैंडिडेट और उसको ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं। तो हमारा बैच लगा हुआ था तो वो गए, हम गए तो एक या दो प्रश्न पूछे मेडिकल के, साइंस के, और फिर एक ने पूछा ये बैच क्या है, हमने कहा ब्रह्मा कुमारीज। तो उन्होंने उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और वाइवा सारा ब्रह्मा कुमारीज पर चले गया। उसका हेडक्वार्टर क्या, अच्छा वहां आ सकते हैं क्या, अच्छा वहां क्या होता है, वो रह गया बाजू में, वो सब उधर रह गया और इधर चला गया। तो ये बैच हमारी रक्षा है, रक्षा कवच है। और जैसे सन्यासी होते हैं अपने भगवे वस्त्र पहनते हैं और उनको याद दिलाता है भगवे वस्त्र की, मैं संसार का नहीं हूं, मैं अलग हूं, वैसे ये व्हाइट ड्रेस भी हमको याद दिलाता है हम संसार के लोग नहीं, हम संसार से अलग है, अल्लाह लोक है, भगवान के चुने हुए हैं, अलग है। तो ये सुरक्षा भी है। अगला है इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थात हमारे वजह से कोई भी चीज वेस्ट ना हो। यहां हम स्थूल बातें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पानी, डीजल, पेट्रोल, भोजन। हम देखते हैं मधुबन में लोग आते हैं, ढेर सारा भोजन ले लेते, क्या खाऊं और क्या नहीं, और फिर वैसी थाली छोड़ देते, आधी गिलास भर के चाय लेते हैं, आधा पीते और आधा छोड़ देते, रोज का है। मधुबन में शांतिवन में माताएं आती है, कमरे में रहती है, जाते समय चाबी साथ में ले चली जाती है और उसको तोड़ना पड़ता है फिर बाद में। तो आए थे पुण्य कमाने, पाप करके जा रहे हैं। 16 फरवरी 1988 की अव्यक्तवाणी है। ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजक भोजन है। दुआ और दवा दोनों इसमें समाई हुई है, एक एक कणा मोहर की तरह है, और उस भोजन को वेस्ट कर देते। जो चाहिए नहीं, पता नहीं, कभी खाया नहीं, उसको भी ले लेते और बाद में खाने के बाद पता चलता है ये तो ठीक नहीं है और छोड़ देते। तो मधुबन में गए थे पाप पुण्य कमाने, पाप हो गया। यज्ञ के रिसोर्सेस को वेस्ट करना, अपनी शरीर को ऐसे चलाना कि बीमार पड़ना, और फिर दवाइयां और फिर टेस्ट्स। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा, जो बच्चे अपनी गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। जो बच्चे अपनी गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं, बाबा उन्हें ज्ञानी तू योगी आत्मा नहीं कहते। जो शरीर को नहीं चला सकते तो राज्य को क्या चलाएंगे। हमेशा यही समझना है कि मेरी पालना यज्ञ से हो रही है, चाहे लौकिक में हो, चाहे सेंटर पर रहने वाले हैं, चाहे मधुबन निवासी है, मेरी पालना यज्ञ से हो रही है। हमने देखा ऐसे कई भाई है जो मंथली सैलरी आती है सबसे पहले बाबा के ट्रांसलेट के सामने रखते हैं और फिर लेते हैं। कई माताओं को देखे, एक सेंटर पे हम गए थे, वहां पर देखा वहां की बहनें जो भी सामान लाएगी, सब्जी, वो पहले बाबा के ट्रांसलेट के सामने और फिर लेगी। सब कुछ बाबा से हमको मिल रहा है, हमारा अपना कुछ नहीं है। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। पेट्रोल, पानी, पानी की किल्लत है, कमी है, कौन देखता है, आठ आठ बकेट पानी से नहा रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, भोजन, कुछ भी वेस्ट ना हो। इकोनॉमी करनी है यज्ञ में, यहां पर भी, सेंटर पर, घर गृहस्थी में और मधुबन, सब जगह हम पर कम से कम खर्च हो, ऐसी दिनचर्या, नहीं तो यह भी बोझ है। और एक इकोनॉमी बहुत सूक्ष्म है, संकल्पों की इकोनॉमी। एक इकोनॉमी सूक्ष्म है, बोल की इकोनॉमी। बोल रहे दिन भर फिजूल, एनर्जी वेस्ट। आज सुबह बोला बाबा ने, शॉर्ट एंड स्वीट स्लोगन है ना। महात्मा गांधी अफ्रीका में थे, एक आश्रम में गए, उसका नाम था ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री। और वहां देखा सब लोग मौन धारण किए हुए, जितने आश्रम के लोग हैं। उनको आश्चर्य हुआ, ये क्या है, सभी साइलेंस में है। वो मठाध्यक्ष से मिलने गए, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, और उनको पूछा, ये क्या है आपके आश्रम में, यहां के सभी इनमेट्स, सभी आश्रम निवासी सब मौन धारण किए हुए, कोई बात ही नहीं करता है। तो उस मठाध्यक्ष ने कहा कि इस आश्रम का नियम है कि मौन धारण करके रहना है। क्यों? उन्होंने कहा, हम मनुष्य इतने कमजोर लोग हैं, हमें तो यह भी नहीं पता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और जब भी बोलते गलत ही बोलते हैं, इसलिए हमने इस आश्रम का नियम बनाया है कि सब लोग चुप हो जाए। आपने विपाश्यना सुना? विपाश्यना 10-10 दिन का शिविर होता है, मौन, कुछ बात नहीं करना है, छोटा छोटा कमरे दिए जाते हैं वहां पे। हम भोपाल गए थे अभी कुछ मास पहले, तो हमारा वो भाई हमको घुमाने लेके गए, और घूमते घूमते रास्ता भटक गए, तो एक आश्रम था विपाश्यना का, वहां पहुंच गए। तो हमने कहा चलो देखते हैं क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने थे, 10-10 दिन का शिविर होता है। तो हमने वहां पूछा ये क्या है, वैसे थोड़ी जानकारी तो पहले भी थी। तो उन्होंने कहा यहां विपाश्यना केंद्र है, मेडिटेशन। क्या मेडिटेशन करते हैं? कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, केवल कमरे में बैठना है, वो छोटे से कमरे में, और कुछ नहीं, मोबाइल यूज ही नहीं कर सकते 10 दिन, केवल मौन में बैठना है, बस अपने आप का चिंतन करना है। सुबह एक क्लास होती है, शाम को एक क्लास होती है, सारे दिन भर चुप, कुछ नहीं करना, यही तपस्या है। और वहां एक ऐसा भी भाई मिला, वो कहने लगा मैं पहले ब्रह्मा कुमारीज में था और अभी यहां आया हूं, जब से यहां आया हूं सब ठीक चल रहा है मेरा, वहां मैं बहुत हलचल में था, ऐसा भी बोला उसने। ऐसी भी आत्माएं हैं जो यहां से भी अतृप्त होकर कहीं और तृप्ति को पाती है। क्यों? उसने एक ही बात कही कि यहां मौन है, इसी मौन ने मुझे आकर्षित किया है। तो इकोनॉमी किसकी? बोल की। दिन भर बोलते रहना, बोल की ऊर्जा नष्ट होती है। और ये तो चलो ठीक है, परंतु लोगों को एक नई आदत है, मोबाइल। कितना देर तक बात करना चाहिए ब्रह्मा कुमार या कुमारी ने? लंबी लंबी, अगर सेवा है तो ठीक, पर सेवा का टॉपिक नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, कुछ और ही बातें चालू है। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा तक बात कर रहे हैं फोन पर, लंबा लंबा। वो सोचता है वो मेरी समस्या को सॉल्व करेगा, वो खुद ही दुखी है, क्या सॉल्व करेगा तुम्हारी समस्या। यहां से मधुबन में बातें चालू है, मधुबन वाले यहां बात कर रहे हैं, वो सोचता है मैं इनकी समस्या ठीक करूं, वो सोचता है ये मेरी समस्या ठीक करेगा, कैसे करेंगे? भगवान के अतिरिक्त हमारी समस्या कोई नहीं ठीक कर सकता, इसीलिए देहधारी और इससे उससे लंबी लंबी बातें सब व्यर्थ है। 3 मिनट से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हां सेवा है, समाचार है, किसी को मुरली सुना रहे हैं, किसी को वास्तविक में गरज है, तो बात और है, नहीं तो व्यर्थ की बातें, वेस्ट है। तो इकोनॉमी किसकी? बोल की। इकोनॉमी किसकी? संकल्पों की, भावनाओं की। उसके बाद में अगला है एफ, फूड, ब्रह्मा भोजन। भोजन के 4 नियम हैं। पहला, हंगरलेस ईटिंग, भूख है नहीं फिर भी खा रहे हैं, और दूसरा ओवर ईटिंग, अधिक खाना। व्यक्ति जितना खाता है उससे आधा पेट उसका भरता है और आधा डॉक्टर का, क्या खाऊं और क्या नहीं, ये खाऊं कि वो खाऊं। तीसरा क्रोध में खाना, अतृप्ति से खाना, कंप्लेंट के साथ खाना, इसमें ये कम नहीं है, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, ये क्या बना, ये क्या बना दिया। और चौथा रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, हमारा भोजन, भोजन के तीन प्रकार है, सतो रजो तमो, तमो अर्थात बासी चीजें और नॉनवेज और वो सारी चीजें, रजो अर्थात राजस जिसमें है बहुत ज्यादा, जिसमें तीखा है और बहुत ज्यादा जिसमें तेल है और बहुत ज्यादा जिसमें मसाले है। जगदीश भाई कहते थे, भाई कहते हैं कि मसाला थोड़ा चाहिए, थोड़ा तीखा, थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लगता है। आयुर्वेद कहता है कि भोजन हमारे शरीर में तीन भागों में विभाजित होता है, सबसे नीचे का भाग मलमूत्र बनता है, दूसरा भाग शरीर बनता है, और तीसरा भाग जाके मन बनता है सीधा। तो जो खाएंगे वो बनेंगे। बाबा के महावाक्य है, ये मत समझना कि तुम बाबा बहुत टेस्टी भोजन इसलिए बनाते हो कि बाबा की याद में बना रहे हो, टेस्टी इसलिए बनाते हो क्योंकि तुमको आदत हो गई है, बाबा के महावाक्य है ये। ये मत समझना कि तुम बहुत अच्छा भोजन बनाते हो इसका कारण है याद में बना रहे हो। भोजन के और चार नियम हैं, इसके लिए अंग्रेज हिंदी में कहते हैं चौका, रसोई को क्या कहते हैं चौका, और भारतीय संस्कृति में जो भोजन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, शादियों में किसको बुलाते हैं महाराज, उनको क्या कहते हैं महाराज। उनका जो कमरा होता है जहां भोजन किसी को अलाउड नहीं होता था पहले जमाने में, और बिना सिलाई का एक ही कपड़ा पहनते थे। तो भोजन बनाने वाला अर्थात जो कर्मेंद्रिय जीत है, महाराज है अपना, राजा है। तो भोजन के और चार नियम है, पहला किस पैसे से भोजन बन रहा है, दो नंबर का है किसी का शोषण करके पैसे कमाया जा रहा है, कितना भी योग लगाओ परंतु घर वाला यदि भोजन जो पैसे ला रहा है वो भोजन यदि गलत तरीके से कमाया जा रहा है तो आत्मा कभी भी शुद्ध नहीं होगी ऐसे भोजन से, वाइब्रेशंस होंगे। दूसरा भोजन में कंकड़ पत्थर, जाति दोष कहते हैं, इस दोष से भोजन मुक्त हो। तीसरा बनाने वाले की मनस्थिति क्या है, भोजन बना रहे पर संकल्प है कि दूसरे ये खाए और पूछे किसने बनाया इतना टेस्टी, और मेरी तारीफ हो जाए, वाह कौन है ये जिसने भोजन बनाया है, उसके पीछे ये भावना है भोजन बनाने के पीछे। और चौथा खाने वाला किस मनस्थिति में खा रहा है, टेस्ट के लिए खा रहा है या भगवान को अर्पित करके खा रहा है, ऐसे ही खा रहा है। अच्छा ये बताओ इस सभा में कितने लोग हैं माताएं जो भोग लगाती है रोज, और बाकी बाकी भगवान को भूखा रख देती है, 24 घंटे में एक बार भोग जरूर लगाना है, कितने भाई है जो भोग लगाते और कितने भाई है जो खुद अपना भोजन बनाते, एक ही। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति, हे अर्जुन पत्र पुष्प और फल जो भी खाओ सबसे पहले मुझे स्वीकार कराओ, मैं अनन्य भाव से इसे स्वीकार करूंगा, कुछ भी भगवान को तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए, वो भाव का भूखा है और प्यार का प्यासा है। इस भावना से तो घर वाले जो घर में रहते हैं और जो भोजन बनाने वाली माता है 24 घंटे में एक बार भोग जरूर लगाना है, और जो भाई जो भोजन नहीं बनाते खाने से पहले उसे शक्तिशाली दृष्टि देकर ईश्वर अर्पण करके ही स्वीकार करना है। एक अव्यक्त संदेश था गुलजार दादी के द्वारा, जिसमें बाबा ने कहा था यदि भोजन याद में बनाया जाए और खाया जाए तो 50% प्यूरिटी अपने आप आ जाएगी। एक भाई टीवी देखते देखते भोजन, वो कहता था हम नीचे देखते हैं तो बाबा को याद करते, ऊपर देखते तो टीवी देख लेते, फिर नीचे देखते खाते समय फिर बाबा को भी याद करते और टीवी भी देखते, दोनों का बैलेंस, टीवी भी चालू है और भोजन भी चालू है, डबल काम एक साथ। ऐसा नहीं होता है, टीवी के सामने बैठ के कौन कौन भोजन करता है जरा हाथ खड़ा करना, ईमानदारी से किया हाथ खड़ा, इसके भी मार्क से। और ये नहीं भूलना ये इंद्र सभा है, झूठ चल ना सके। भोजन करते समय सारे डिजिटल जितनी दुनिया है सबसे अलग हो जाना है उस समय के लिए। भोजन करना तपस्या हो जाए, भोजन बनाना भी तपस्या बन जाए और भोजन करना भी तपस्या की एक क्रिया हो जाए। भोजन बनाओ, एक एक चीज जो उसमें डाल रहे हो एक एक चीज को सकाश देते देते भोजन बनाना है। तेल डाला उसको सकाश, मसाला डाला उस मसाले को सकाश, सब्जी डाली उस सब्जी को सकाश। और शुद्ध संकल्प करने हैं कि जो ये भोजन खाएगा उसका क्या हो जाएगा, हृदय परिवर्तन। यदि पुरुष के दिल तक पहुंचना है तो मार्ग है पेट, माताओं के लिए और बहनों के लिए। किसी के पुरुष के दिल तक पहुंचना है तो मार्ग क्या है, पेट। पेट को तृप्त कर दो, दिल तृप्त हो जाएगा। ज्ञान में चलते नहीं बच्चा पति, उसको ऐसा ब्रह्मा भोजन खिलाओ रोज ये अपने आप ही आ जाए, इतनी पावर है इस भोजन में। उसके बाद में अगला जी, जी अर्थात गिव। क्या गिव, क्या देना है, शुभ भावना, शुभ कामनाएं, दुआएं और खुशी। ये तीन चीजें सभी को देना, ये ईश्वरीय नियम है। हमसे किसी को दुख ना हो, हमारी वजह से किसी के संकल्प ना चले, और सभी के लिए दुआएं। और ये ना भूलना कि हम जो संकल्प करेंगे वो होंगे। यदि मैंने किसी के लिए गलत संकल्प किया तो बेचारे का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, जो बोल देंगे वो हम है। शास्त्रों में जो उदाहरण है दुर्वासा, वो कौन है, अमी। किसी को शापित नहीं करना है, हमारे साथ ऐसा ऐसा किया अब हम देखना क्या करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की भी भाषा है, कई कई अलग सूक्ष्म रीति से बदला लेते हैं। हमें किसी से भी बदला नहीं लेना है, हमारी कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं, अपने साथ है। और जो कुछ गलत अगर हमारे साथ हुआ है इस जीवन में वो मेरा ही हिसाब किताब था, इसलिए मैं सबको माफ कर देता हूं। और एक बात, इस ब्राह्मण परिवार में, ये ब्राह्मण परिवार एक एग्जामिनेशन हॉल है, एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है, हर एक से पेपर आएगा। वो आत्मा जिसका हमने कोर्स कराया था, वो आत्मा जिसका हाथ पकड़ के मधुमन लेके गए थे, वो आत्मा जिसको बाबा से मिलाया था, एक दिन वही हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। क्यों, हिसाब है, किसी जन्म का हिसाब है, चुकतू यही होगा। इसके लिए दुखी नहीं हो जाना है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मुझे ऐसा ही क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोल दिया, इतना खराब, हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कलंक क्यों लगा दिया, तो मत। तो शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, दुआएं और खुशी देनी। उसके बाद में एच, होली कंपनी अर्थात सत्संग। सत्संग करते रहना है हमेशा, और सबसे बड़ा संग है भगवान का संग, और दूसरा संग है श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं का संग, तीसरा संग है किताबों का संग। अच्छी ईश्वरीय किताबें पढ़ते रहना है, स्पार्क की किताबें है, जगदीश भाई की किताबें है, यज्ञ का लिटरेचर है। ज्ञानामृत कितने लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते। अब ये एक नया काम चालू करना है, हर मास का ज्ञानामृत एक हफ्ता या 15 दिन के अंदर पूरा पढ़ के होना चाहिए, एक लाइन भी मिस ना हो। अपने आप को बिजी रखना है, नहीं तो बुद्धि यहां आ जाएगी। न्यूज एडिक्शन है, नया एडिक्शन है ये। न्यूज क्या हुआ, इस पार्टी ने क्या कहा, उसने नेता ने ये कहा, अब ये नेता क्या कहेगा, अब यहां ये हो रहा है, वहां हो रहा है, न्यूज 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 न्यूज, बुद्धि में न्यूज, ऑनलाइन न्यूज एडिक्शन। न्यूज ही पढ़ते रहते दिन रात, बहुत मजा आता है। फिल्मों की न्यूज, किसका क्या अफेयर चालू है, तुमको क्या करना है, एडिक्शन जैसा हो गया है, लत। तो सत्संग अर्थात प्रकृति का सत्संग, सत्संग अर्थात ऑडियो विजुअल सत्संग, अच्छी अच्छी क्लासेस सुननी है रोज, एक क्लास। और वो सुनना केवल सुनना ना हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कनरस ना हो भक्ति मार्ग जैसा। क्लासेस अगर सुन रहे हैं, पॉज, पॉइंट्स लिखो क्या सुना, पॉज पॉइंट्स लिखो। अब क्लास को बाजू रखो और वो जो क्लास की पॉइंट्स लिखी उसको मन ही मन रिवाइज करो, उसमें एडिशन करो। क्या है, मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाना, यह सबसे बड़ा सत्संग है। तो होली कंपनी, उसके बाद में अगला है आय, अगला नियम आय। आय अर्थात इनकलकेट वर्च्यूज, इनकलकेट अर्थात धारण करना, दिव्य गुणों की धारणा। ऐसा नियम, ऐसा कौन सा वर्च्यू है, कौन सा गुण है जो मुझ में नहीं है, उस पर काम करना है। 36 की तो लिस्ट है, पर बड़ी लिस्ट हो सकती है। क्या मुझ में अनुशासन है, क्या सहन शक्ति है, या किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया और उदास, 2 दिन के लिए उससे बात ही नहीं करेंगे अभी, उदास, छुई मुई, टच मी नॉट, मुझे कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा होगा क्या, होगा, कभी नहीं होगा। हम ज्यादा किन से सीखते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं उनसे या जो हमारी तारीफ करते हैं उनसे, निंदकों से हम ज्यादा सीखते हैं, जो विरोध करते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं या सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं। विरोध बहुत सिखाता है वो, जो हम पर दोष लगाता है, आरोप लगाता है, बहुत कुछ सिखाता है हमको, झूठा आरोप लगाता है। और उनका भी कितना त्याग है, अपना ज्ञान योग छोड़कर हमको संपूर्ण बनाने के लिए इतना अथक पुरुषार्थ वो कर रहे हैं, अपने ज्ञान योग का त्याग कर। उनका एक ही लक्ष्य है कि हम संपूर्ण बन जाएं, हम में कोई दोष ना रहे, हम बहुत शक्तिशाली बन जाएं। कितना त्याग है उनका, कितनी कल्याण की भावना अंदर गुप्त रूप से छिपी हुई है। जैसे कहते हैं रामायण में सबसे श्रेष्ठ पात्र कौन सा है, मंथरा। कितना बड़ा त्याग कर दिया, इतना कलंक ले लिया उसने अपने ऊपर। अगर उसने नहीं किया होता ये सब, तो राम जी तो बस राम जी रह गए होते, अयोध्या में ही रह गए होते लास्ट तक, ना तो कभी वन गए होते और कितने राक्षसों का उद्धार मारा और सब साधु संतों का उद्धार, नहीं तो आने का कार्य अपूर्ण रह गया होता। तो एक ये दूसरा पहलू है देखने का उसको। तो जो भी निंदा करे बहुत अच्छा, उसने हमें बहुत सिखाया। हम रोज अपने टाइम पर ड्यूटी पर आते हैं, एक दिन लेट हो गया और किसी ने कहा तुम हमेशा ही लेट आते हो, चुप गया ना अंदर, तो अच्छा ही कहा ना। रात भर रंगोली निकालते रहे नींद को छोड़कर, सुबह आके कहता है कौन है ये, किसने निकाला ये, एकदम फालतू है, उदास। बहुत भोजन बनाया तन मन लगा के पूरा, और वो आया कोई और कहता ये कोई भोजन है, टेस्टी नहीं है इसमें, तो उदास। बहुत सेवा की भाग दौड़ करके, बहुत सेवा की, कोई आके कहता ये सब फालतू है, इससे कुछ नहीं होने वाला, उदास। धन्यवाद देना चाहिए मन ही मन उनको, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नहीं तो अहंकार से तो हम कहां ऊपर चढ़ गए होते। सब लोग मिलके तारीफ कर रहे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा है, चाहिए ऐसे क्रिटिक्स चाहिए। और घर तो बाजू में ही चाहिए, निंदक निहारे राखिए। एच आय इनकल्केशन, कितना मैं सहन कर सकता हूं। उसके बाद में जे, जे अर्थात जर्नी टू मधुबन। ये एक नियम है, मधुबन हम जाते हैं साल में एक बार दो बार। वहां जाकर क्या करते हैं हम देखते हैं, लोग वहां जाते हैं और क्या करते हैं, तपस्या छोड़कर परचिंतन प्रदर्शन में लग जाते हैं। वहां जाते हैं और मधुबन निवासियों की क्या क्या खामियां हैं और गलतियां हैं उसको निकालने में लग जाते हैं। वहां जाकर सामने जो बाजार है मार्केट उसी में बिजी रहते हैं, शॉपिंग में, ये खरीदना है वो खरीदना है। वहां जाते और इससे मिलना है उससे मिलना है उसी में लगे रहते हैं। गए थे तपस्या करने और चार दिन तो इधर उधर ही लगा दिए, बाबा से मिले वहां पर भी फोन पे बातें चालू है। गए थे कुछ अनुभव करने के लिए, अनुभव तो कुछ भी नहीं हुआ, और अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं है जो ऐसे ही मिल जाए। त्याग चाहिए उसके लिए, तपस्या चाहिए, वैराग चाहिए, तब तक कोई अनुभव नहीं होगा। हजार बार बाबा के सामने बैठो कोई अनुभव नहीं। और ये सब करके सेंटर पर आकर सुनाते हमको बहुत अनुभव हुआ बाबा का, झूठ। किसी ने एक मैसेज भेजा था, सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया पे मिल जाए। मैसेजेस भेजते रहते ना आजकल, आज का मोती, आज का वो थॉट फॉर द डे, वो उसी में लगे आधे लोग तो। उससे कल्याण होकर होता तो क्या बात थी। ये भी एक नया एडिक्शन है, फॉरवर्ड वाला, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सदगुरुवार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नुमा शाम का योग, आधे लोग इसको भेजने में लगे हुए हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हम ये सोच रहे कि उसका कल्याण हो जाए, उसको खुशी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हैप्पी श्राद्ध, हैप्पी श्राद्ध, क्लास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमको आई फॉरवर्ड, दूसरे के पास गई, अच्छा वेरी गुड, आगे फॉरवर्ड। उसको लगता है अच्छा ये इतनी अच्छी क्लास है, ये सेंटर पर भेजते हैं, बहनों को पास जानी चाहिए, ये ईमेल गिर दी, उनके पास पहुंची, अरे बहुत अच्छी है, आगे फॉरवर्ड आगे फॉरवर्ड। वो क्लास बिचारी अनाथ घूमती रहती है, उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है, सबने एक ही काम कर दिया, दूसरों का कल्याण, सुपर, आगे भेजो आगे भेजो आगे भेजो आगे भेजो। क्यों भेज रहे, पहले खुद सुनो, खुद धारण करो, स्वरूप बनो, उसके बाद ही अधिकार है आगे भेजने का। ये भी पागलपन है एक, मीडिया सोशल मीडिया कुछ भी भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, नए नए ग्रुप्स बनाते हैं और जबरदस्ती लोगों को उसमें ऐड करते हैं। क्यों? तो मधुबन में जब जाए तो लक्ष्य हो तपस्या, मधुबन में जब जाए तो लक्ष्य हो बाबा से अनुभूति, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है ऐसी बातें। ये सब चीजों के लिए हम मधुबन नहीं जा रहे हैं, हम देखते यही सब करते रहते हैं, वहां पर फालतू बातों में लगे रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं, अब यहां जाना है वहां जाना है, ये खरीदना है वो खरीदना है। इसलिए गए थे क्या, दूसरों को करेक्शन करने गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, वहां जो हो रहा है होने दो, हम यहां आए हैं तपस्या के लिए बस, यहां ऐसा क्यों है वहां वैसा क्यों है, ये सब चीजों में हमको जाना नहीं है। उसके बाद है के अर्थात कीपिंग चार्ट, अगला नियम है यज्ञ का, रात को सोने से पहले चार्ट, चाहे लिख के या फिर मौखिक बाबा को सुना के फिर सोना है। और ये चार्ट लिखना भी एक नई कला हो, ऐसा नहीं कि ये जो चार्ट बना है बस उसी को भरते जा रहे भरते जा रहे भरते जा रहे और उसका कोई इधर संकल्प नहीं है, अंदर चेकिंग है चार्ट, अपने आप को देखना कि आज सारे दिन भर कैसा रहा, ठीक रहा, श्रीमत का उल्लंघन किया क्या किया, तो इस चार्ट को नवीनता लानी है चार्ट में भी। और हम तो ऐसा कहते हैं कि रोज की मुरली से नया चार्ट बनाना है, मुरली सुनते सुनते ही। सुबह बोल के वैसे में था, बोल कैसे रहे सारे दिन भर। उसके बाद में एल, एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्यार बस। जहां प्यार बढ़ जाता है कम कम हो जाता है फिर। जितना प्रेम हमारा भगवान से हो उतना और किसी से ना हो। और ये प्रेम ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर है, और ये प्रेम ही हमको बहुत कुछ सिखा देगा कैसे इस ब्राह्मण जीवन में चलना है। उसके बाद अगला है एम, मुरली चिंतन। कितने लोग करते हैं मुरली चिंतन? सब करते हैं चिंतन? सुनना नहीं, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, हम कह रहे हैं चिंतन। चिंतन वाक्य वाक्य की गहराई में जाना कि बाबा ने क्यों कहा, किस लिए कहा। और चिंतन के लिए दो चीजें चाहिए, मौन और एकांत। व्यस्त दिनचर्या में मौन निकालना है और एकांत निकालना है, और उसमें बैठकर चिंतन करना है कि ये जो वाक्य है क्या है। और सबसे बेस्ट टाइम है चिंतन का अमृत वेले के बाद। जैसे अमृत वेला पूरा होता है, चाहे घर में है, सेवा केंद्र में है, तुरंत सेवाएं चालू नहीं करनी है, थोड़ा सा रुकना है 15-20 मिनट, एकांत में मुरली पढ़ना है क्या कहा। सारे दिन भर कितनी भी मुरली पढ़ो अंदर नहीं घुसती है, सुबह जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। इसके लिए सुबह का समय बहुत जरूरी है। वैसे तो सारे दिन भर चिंतन चले वो दूसरी बात है। उसके बाद है एन, एन अर्थात नो। नो की लिस्ट बनानी है, कौन सी चीजें बाबा ने बिल्कुल मना कर दिए, करना ही नहीं है और मैं कर रहा हूं। नो मतलब नो, अपने डायरी पर ऊपर लिख दे, एक वाक्य लिखना है सबको, बाबा ने मना किया है। रात रात भर 10 बजे सोने का टाइम है, 10 बजे कुछ देखना चालू कर रहे मोबाइल पर टीवी पर, और सोते सोते 11:30 हो रहे, कैसे उठेंगे अमृत वेला। नो मतलब नो, किसी से बहुत ज्यादा लगाव है, फैमिलियरिटी हो गई है, उसी से बात करने की इच्छा होती है, उसी को सब कुछ सुनाने की इच्छा होती है, उसको सब पता हो हमारे बारे में। इसका परिणाम दुखी है और कुछ नहीं। तो नो की एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी बातें हैं जो मुझे करनी नहीं है दिन भर, और जो मैं अभी कर रहा हूं और उसकी वजह से दुख है, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। उसके बाद है ओ, ओ अर्थात ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, ऑब्जर्विंग श्रीमत, श्रीमत का पालन करना। मुरली से यही छाटना है सुबह सुबह, सुनते समय, पढ़ते समय, श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है। ये तीन चीजों को जिसने छाट लिया उसका जीवन सफल। ये है मनमत, ये है श्रीमत, ये है परमत। इसको हटा दो, इसको हटा दो, और श्रीमत क्या है, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। ऑब्जर्विंग सीट। उसके बाद है पी, ये जो पॉइंट है पी का भाइयों के लिए ज्यादा है, प्रिंटिंग लिटरेचर। अपनी पर अपने हिसाब से लिटरेचर प्रिंट करना, बड़ी बहन को न बताकर खुद ही डिसाइड करना, यहां प्रोग्राम रखना है, खुद ही पर्चे छपवाना, खुद ही पॉम्पलेट बनाना, खुद ही बांटना, यह ईश्वरीय नियम नहीं है। भगवान ने बहनों को निमित्त बनाया है, और कई कई सेवा केंद्र पर ऐसा होता है, इसलिए यज्ञ में ये नियम है। ये जो नियमावली हम बता रहे हैं इसमें से, ये तो बहुत सारी है, पर कम से कम 16 बातें, विदेश में जितने सेंटर्स है उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ये पॉइंट आती है प्रिंटिंग लिटरेचर। भारत की जो नियमावली सेंटरों पर लगी है वो अलग है, विदेश के जितने सेंटर्स है आउटसाइड इंडिया उसमें 16 पॉइंट्स का एक चार्ट है जो हर सेंटर के सामने लगा हुआ है अंदर, उसमें यह पॉइंट आती है प्रिंटिंग लिटरेचर। अपने हिसाब से लिटरेचर प्रिंट करना, किताब पब्लिश करना बिना मधुबन की परमिशन के, कविताओं की किताब या कुछ भी, उसके बाद है क्यू, क्यू अर्थात क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी अश्योरेंस, अर्थात जो भी सेवा करे वो कैसी हो, क्वालिटी वाली हो, गुणवत्ता हो उसमें, ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे वो चित्र है हमारा, सब जानते होंगे, वो प्रदर्शनी का एक चित्र है ना, जिसमें ज्ञान में आने से पहले का चित्र है, ज्ञान में आने के बाद का चित्र है। ज्ञान में आने से पहले वो दिखाया है रोटी बना रही है एक माता और बच्चे लड़ रहे हैं, ज्ञान में आने के बाद प्यार से बैठे हुए हैं, तो एक माता ऐसे समझा रही फटाफट फटाफट, ये देखो ज्ञान में आने से पहले रोटी बनाते थे, अभी ज्ञान में आ गए पूरी तल रहे, चलो आगे, ऐसा ही दिखाया ना चित्र, माता जी पूरी तल रही है, बच्चे आराम से बैठे हैं और बाबा की याद में है, ये ज्ञान में आने के बाद का चित्र, ज्ञान में पहले का बच्चे झगड़ रहे और रोटियां पका रही है फटाफट फटाफट, ये ज्ञान में आने पहले रोटी, ज्ञान में आ गए अभी पूरी, चलो आगे फटाफट फटाफट फटाफट, दिल नहीं है, मन कहीं और लगा हुआ है और प्रदर्शनी समझा रहे, क्वालिटी नहीं है उसमें। जो भी सेवा सेंटर पर मिले पूर्ण मनोयोग से करनी है, ये समझ के नहीं कि किसी बहन के लिए कर रहे हैं या किसी सेंटर के लिए, भगवान के लिए, हम जो कुछ पुण्य करेंगे अपने आप जमा होगा, किसी को दिखावे की कोई बात नहीं है इसमें। उसके बाद आर, आर अर्थात रिलेशनशिप संबंध, एक ब्रह्मा कुमार और एक ब्रह्मा कुमारी के संबंध कैसे होने चाहिए, एक ब्रह्मा कुमारी और दूसरे ब्रह्मा कुमारी के संबंध कैसे होने चाहिए, एक ब्रह्मा कुमार और दूसरे ब्रह्मा कुमार के संबंध कैसे होने चाहिए। संबंधों में मिठास हो, प्रेम हो, सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, और सबसे बड़ी बात अटैचमेंट ना हो। संबंध कैसे हो हमारे, डिटैच्ड, कहीं गए चार दिन रहे, जाते समय बहुत अच्छे से रहे चार दिन, वहां से चले गए बस, अब 10 बार फोन करने की जरूरत नहीं है, क्या था कैसा था, आई मिस यू एंड वो सब बातें, लगाव उत्पन्न होता है। डिटैच्ड संबंधों में क्या हो, डिटैच्ड, इसको साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। पति पत्नी उनके बीच में भी एक डिस्टेंस हो, एक स्पेस हो, हर चीज में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, हर एक का अपना व्यक्तिगत जीवन है, चाहे दो लोग समीप रहते हो पर उनके बीच में एक डिस्टेंस हो। एक कहानी है इससे जुड़ी हुई रविंद्रनाथ टैगोर की, बंगाली में लिखी हुई शोशीर कविता, द लास्ट पोएम, जिसमें एक युवक है एक युवती है, दोनों का आपस में बहुत प्यार है, पर वो जो स्त्री है वो बहन है वो बहुत अमीर है और वो जो भाई है बहुत गरीब है, दोनों शादी करना चाहते हैं। तो वो युवक उसको कहता है कि हम लोग शादी करेंगे, वो कहती हाँ हम लोग शादी करेंगे पर मेरी एक शर्त है, वो बहन कहती है क्या शर्त, वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाऊंगी, तुम उस महल में रहना और मैं यहां रहूंगी, शादी के बाद हम साथ में रहे नहीं रहेंगे। वो कहता है क्या, हम शादी के बाद साथ नहीं रहेंगे तो शादी क्यों करनी है फिर, ये कैसी शादी है। वो कहती बस यही मेरी शर्त है, शादी के बाद तुम उधर रहोगे मैं इधर रहूंगी, बीच में एक झील है, तुम कभी उधर से आ रहे हो मैं इधर से आ रहे हूं, हाय हेलो ओम शांति, कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे हमको मिलना है, तुम उधर से नौका विहार कर रहे हो मैं इधर से नौका विहार कर रही हूं, मिल लिए बहुत अच्छा। वो कहता है क्यों, वो कहता है बस मेरी यही शर्त है। वो कहती है अगर तुमको किसी और से शादी करनी है तो कर लो, परंतु मैं तो केवल तुमसे ही प्यार करती हूं, अगर तुमने शादी नहीं की तो सारी उम्र तुम्हारी याद में रहूंगी, किसी से शादी नहीं करूंगी पर मेरी ये शर्त है। वो कहता है ये तो अजीब है, ये कैसी शर्त है तुम्हारी। वो कहता है यही है। वो कहता है आखिर क्यों। वो कहती है मैं नहीं चाहती कि हमारा ये जो प्यार है ये पतन हो जाए, मैं नहीं चाहती कि ये जो प्यार में फ्रेशनेस है, ये जो रोमांस में फ्रेशनेस है ये खत्म हो जाए, हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूं कि ये प्यार ऐसा ही रहे ताजा हमेशा के लिए। डिस्टेंस, इसलिए अगर एक सेवा केंद्र पर भी दो लोग रहते हैं या घर में भी दो लोग रहते हैं तुम उधर हम इधर, बीच में झील। कौन सी झील? बाबा नाम की झील। दो बहनें साथ में रहती है, तुम उधर हम इधर। पति पत्नी साथ में रहते, तुम उधर हम इधर। दो भाई कुमार साथ में रहते, तुम उधर हम इधर। ऑफिस में दो लोग साथ में काम करते, तुम उधर हम इधर। डिस्टेंस, बीच में अंतर हो। हर एक को टाइम दो, स्पेस दो टू ब्रीद। हर एक को स्पेस चाहिए रहती है। इतना इंटरफियर नहीं करना किसी के जीवन में कि वो इरिटेट हो जाए हमसे। इतनी पाबंदियां नहीं लगा देनी किसी में कि वो इरिटेट हो जाए हमसे। हर एक व्यक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट आत्मा है, उसको जो करना है कर। हम सजेस्ट कर सकते हैं पर कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को। माता ये चाहती है कि हमारी बेटी सीधा ब्रह्मा कुमारी बन के सेंटर पर रहने लगे, और ब्रह्मा और माँ बहन की वो जो कुमारी है उसके तो रवैया और तेवर ही अलग है। वो तो अपने जीवन की स्वप्न देख रहे हैं, कोई राजकुमार घोड़े पर बैठकर आएगा, और हम उसको कहते हैं कि तुमको ब्रह्मा कुमारी बनना है। क्यों बनेगी वो? जिसको यहां आना है कैसे भी करके आएगा, जबरदस्ती नहीं लाना है किसी को। हॉस्पिटल में कभी एक भाई आया था, उसके पूरा परिवार ज्ञान में चलता था, वो नहीं चलता था, तो उसको ब्रह्मा कुमार बनाने के लिए हॉस्पिटल में उसको जॉब दिलाया। पर वो ऐसा महारथी था, सोचा कि शायद यहां का ब्रह्मा भोजन खा खा के तो कम से कम इसकी बुद्धि का ताला खुले। वो ऐसा वहां का भोजन नहीं खाता था, मार्केट से होटल से भोजन लाके खाता था। इंग्लिश में कहते यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैनॉट मेक इट ड्रिंक वाटर। घोड़े को तालाब तक लेके जा सकते हो, पानी थोड़ी पिला सकते हो उसको। किसी को जबरदस्ती ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी नहीं बनाना है। जिसको बनना है वो बन जाएगा। जिसको शादी करनी है कितना भी रोको, रुकने वाला है क्या? भाग कर शादी करेगा। और जिसको करनी ही नहीं है वो तो मंडप से भाग के शादी करेगा, भाग जाएगा वहां से। एक ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई थी, एक कुमार था, इतना पक्का था, इतना पक्का था। उसने बता दिया घर पर कि नहीं, मुझे नहीं शादी करनी है, जो करना है कर लो। पर नहीं माने माँ बाप। इतना सब समझाने के बाद में भी जबरदस्ती उसकी शादी कराई, शादी के मंडप के बीच से भाग गया, और भागने के बाद पिताजी को हार्ट अटैक हो गया और डेथ हो गई। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सोचने की बात है। जबरदस्ती नहीं करनी है किसी पर भी। जिसको बनना है वो बनेगा, जिसको करना है वो करेगा। और जो हमारे बच्चे हैं, ये नहीं समझना कि ये हमें खुशी देने के लिए आए। छोटा सा बच्चा पालना में आता है, उसके हाथ में एक तलवार भी होती है। कौन सी? हिसाब किताब चुकतू करने आया है। उसकी जो मुस्कान है, मंद मंद हाथ में तलवार लेकर चल रहा है। संसार में इतने सारे वृद्धाश्रम हैं, उसमें वो लोग रहते हैं जिनके बेटे उसी शहर में रहते हैं, और वो लोग वृद्धाश्रम में हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे बेटे हैं संसार में, ऐसे बच्चे हैं, संतान हैं। तो हमारे जो घर में आ रहा है, ये नहीं समझना ये बहुत सुख देने आ रहा है। किस लिए आ रहा है? हिसाब किताब चुकतू करने। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, गरीब घर में। दो दिन के बाद पता चला बच्चे के दिल में छेद है। डॉक्टर के पास लेके गए, छेद का पता चला। डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए का खर्चा है। इतनी हैसियत नहीं थी। इधर से कर्जा, इधर से कर्जा, यहां से लोन, वहां से लोन, डबल काम किया मां बाप ने मिलके, मजदूरी की, सब कुछ किया, 5 लाख रुपए जमा किए, ऑपरेशन कराया। 2 दिन के बच्चे का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 5 दिन के बाद बच्चा मर गया। किस लिए आया था? पैसे लिए थे ना उससे, वापस लेने आया था। तुमने लिए थे ना उससे 5 लाख, अब लेने तो आएगा ना। इसलिए जबरदस्ती किसी पर भी नहीं करनी है। कोई भी बात की जबरदस्ती नहीं करनी है। एक शांतिवन में भाई रहता है, उसने अपने भाई को बुलाया, लौकिक भाई को। सोचा कि यहां आके परिवर्तन हो जाए और ब्रह्मा कुमार बन जाए। और शांतिवन में घूम रहा है वो, जो भी मिलता था आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, इतना फेडअप और इतना इरिटेट हो गया कि अगले 3 दिन वो शांतिवन के बाहर ही घूमता रहा सुबह से शाम तक, अंदर आया ही नहीं, केवल सोने आता था अंदर, क्योंकि यहां जो भी मिलता है पकड़ के आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। एक बहन का बीच में फोन आया था, वो ट्रेन से जा रही थी मधुबन, वो कह रही थी कि ट्रेन में ऐसा एक भयंकर दृश्य देखा, 3-4 ब्रह्मा कुमार और बहन कोई कुमारी, ट्रेन में सेवाएं चालू थी, बहुत अच्छी बात है ट्रेन में, बाबा कहते सेवा करो, पर ट्रेन में ऐसी भयंकर सेवा चालू थी कि सीधा 1 घंटे में आत्मा से चालू करके सीधा ब्रह्मचर्य तक ही छोड़ा उसको, बड़ी बेरहमी से रहम कर रहे थे, रिलेंटलेस मर्सी। ऐसा होता है, मधुबन में व्यक्ति आता है, मधुबन पहले पीस पार्क जाता है, फिर म्यूजियम जाता है, फिर ओम शांति भवन में आता है, और कुछ कुछ ऐसे उत्साह वाले सेवाधारी होते हैं, वो सामने वाला कहता है हम अभी सुन क्या है, वो कहता है हटाओ मैं सुनाऊंगा अब तुमको, तुमने कुछ भी सुना होगा अब सुनो मैं जो सुनाता हूं, शुरुआत से सुनो, आत्मा परमात्मा परम धाम ब्रह्मा और ब्रह्मचर्य। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ब्रह्मचर्य की सुन के बेचारा उदासी हो जाता है सामने वाला, ऐसे भागते हैं कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। फिर बाबा ने कहा नब्ज देख कर ज्ञान सुनाओ, किसको क्या चाहिए। स्टूडेंट आया है सेवा केंद्र पर, उसको चाहिए कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाऊं, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे आई, और हम उसको कुछ और ही सुनाए, धर्म कैसे स्थापित हुए, भाग जाएगा। तो हम बात कर रहे थे डिटैचमेंट की, संबंधों में रिलेशन आर, उसके बाद है एस, एस में 2 है साइलेंस और सॉलिट्यूड, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, मौन और एकांत। सारी व्यस्त दिनचर्या में ये 2 चीजों के लिए टाइम निकालना है कैसे भी करके। उसके बाद है टी, ट्रस्टी। हम पैसे कमाते हैं, घर गृहस्थी में है, ऐसे रहना है कि जैसे ये मेरे नहीं है, जैसे बैंक का मैनेजर होता है दिन भर पैसे गिनता है, पर उसको पता है ये मेरे नहीं है, उसकी सैलरी मिलने वाली है 1 महीने के बाद, ये सब मैं ट्रस्टी होकर संभाल रहा हूं, ये पत्नी ये बच्चे ये पति ये जो भी है, इन सब की संभाल मुझे करनी है, बच्चों की भी संभाल करनी है, पर ट्रस्टी होकर। पर हां उन्हें करना वही है जो वो करेंगे, हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका जन्म ही मधुबन में हुआ, माउंट आबू में, जिनका बचपन दादियों की गोद में गुजरा, ओम शांति भवन की स्टेज पर जिन्होंने बचपन से प्रोग्राम किए, आज वो है ही नहीं ज्ञान में, शादी करके बैठे हैं कहीं, ज्ञान में ही नहीं है, ऐसे बच्चे क्या कहे अब। उसके बाद यू, यू अर्थात यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल लाइफ, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना। ऐसा नहीं ज्ञान बहुत अच्छा है, मुरली बहुत अच्छी थी, बहन जी ने बहुत अच्छी मुरली सुना दी, पर उसका किया क्या, यूज किया ही नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, दिनचर्या में कहां यूज किया उसको। परिस्थिति आई, सुबह सुना बाबा मदद करता है, पर दिन में परिस्थिति आई बाबा को आह्वान ही नहीं किया, भूल ही गए। ये भी एक नियम है ज्ञान को यूज करना। उसके बाद है वी, वी अर्थात विजिटिंग अदर सेंटर, एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र में हम जा रहे हैं। ये सारे जो 26 नियम है ये सेंटर निवासियों के नियम है, जिस सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र पे जा रहे हैं एक लेटर लेके जाना है। ऐसा नहीं हमारी तो बहुत पहचान है, मधुबन में जा रहे हमारी बहुत पहचान है, हमें किसी लेटर की जरूरत नहीं है। नियम क्या है यज्ञ का, एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र जाते हैं तो बहन का लेटर होना चाहिए, अगर वहां रहने जा रहे या भोजन की व्यवस्था चाहिए जो भी। उसके बाद में डब्लू, डब्लू सबको पता है वॉश आफ्टर मोशन, पेट साफ करने के बाद में स्नान करना, ये यज्ञ का नियम है। उसके बाद एक्स, एक्स अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात स्वयं की चेकिंग, एक्सरे करना और खुद को देखना क्या हो रहा है, मैंने कौन सी गलती कर दी। एक तो बताया चार्ट जो लिखते हैं, एक है बार बार चेकिंग करते रहना दिन भर में कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। उसके बाद है वाई, वाई अर्थात योगा ट्वाइस अ डे, 24 घंटे में दो बार जो नियम बने हैं, अमृत वेला और नुमाशाम का योग, ये होना चाहिए डेली। और लास्ट जेड, जेड अर्थात झील, झील मतलब उमंग उत्साह, हर काम उमंग उत्साह से करना है। तो ऐसे ए से लेकर जेड तक ऐसे 26 नियम है इस यज्ञ के, इस संस्था के, या इस ब्राह्मण जीवन में, या सेंटर निवासियों को ये सारे नियमों का फॉलो करना है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला अमृत वेला, जिनका अमृत वेला नहीं होता है आज से संकल्प करेंगे कल से बिल्कुल करना है, मतलब करना है। दूसरा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली जो सारी बातें हैं, यहाँ कुमार भी है भाई भी है, वो सारी ध्यान रखेंगे, वो सब बातों को स्टॉप कर देना है। तीसरा सेंटर एटमॉस्फियर को कैसा बनाना है, पावरफुल बनाना है। डी मतलब ड्रेस, हमारा ड्रेस कैसा हो, सिंपल हो, बहुत शालीनता हो उसमें, हमारे ड्रेस को देखकर किसी को लगे ये कौन लोग हैं, ये थोड़े अलग दिखते हैं सबसे, इतनी उसमें पवित्रता हो, दिव्यता हो उस ड्रेस में। संसार के लोग जो फैशन और वो सब करते हैं वो हमारा ड्रेस नहीं है। उसके बाद इकोनॉमी, हर चीज की इकोनॉमी करनी है, संकल्प बोल और स्थूल सारी बातें। उसके बाद भोजन, भोजन का महत्व, भोजन के और तीन नियम हैं। पहला भोजन ऐसा ना हो कि हम में आलस और प्रमाद लाए, इतना खा लिया कि अब बस नींद ही करने की इच्छा है, ऐसा भोजन नहीं करना। दूसरा उत्तेजना उत्पन्न करे वाला भोजन नहीं करना है, वो भोजन खाने के बाद ऐसी आवाज आती है, संसार में है शोक वाटिका, शोक वाटिका, दुखी, और हम जा रहे हैं कहां, अशोक वाटिका, और ब्राह्मणों की है छोक वाटिका, जहां पे हर चीज को क्या करते हैं, छोक लगाते हैं। चावल है पर अब क्या करो उसको, छोक लगाओ, छोक, हर चीज का छोक, उसको कहते हैं छोक वाटिका। विवेकानंद से कभी किसी ने पूछा था विदेश में, आपके देश के धर्म का क्या हुआ, उन्होंने कहा था मेरे देश का धर्म चूल्हे और चौकों में जाके भस्म हो गया है, जहां पर किचन मंदिर है और भोजन भगवान, वेर टेम्पल इज गॉड एंड फूड इज, वेर टेम्पल इज, वेर किचन इज टेम्पल एंड फूड इज गॉड। दिन रात भोजन का ही चिंतन करते रहते, सुबह उठने के बाद नाश्ता क्या खाना है, दोपहर का क्या खाना है, रात का क्या खाना है, भोजन 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 भोजन, दिन रात भोजन का ही चिंतन। एफ, एफ के बाद जी, देना, गिव, क्या देंगे, खुशी, शुभ भावनाएं और दुआएं। उसके बाद एच, एच अर्थात होली कंपनी, होली कंपनी अर्थात सत्संग। एच आई, आई अर्थात इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज, इंग्लिश शब्द है इनकल्केट अर्थात धारण करना। उसके बाद में जे, जे अर्थात जर्नी टू मधुबन, मधुबन अगर जाए तो वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग पहले से करके जाना है, ऐसे नहीं मधुबन गए और आ गए और खाली के खाली, कोई अनुभव ही नहीं हुआ भगवान का। अभी सीजन चालू होगा बाबा का, लक्ष्य बना के जाना है, किस लिए मैं जा रहा हूं, शॉपिंग करने जा रहा हूं या कुछ और करने जा रहा हूं। रतन मोई, प्रकाशमणि दादी ने कभी क्लास में, बहुत पहले की बात है, कहीं से हमने सुनी है, माताएं बैठी थी बहुत सारी और यज्ञ में थोड़ी सी कमी थी, तो दादी ने कहा था जितनी माताएं दे सकती है कुछ भी यज्ञ के लिए दे। माता ने कहा था सब माताओं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। दादी का ठीक है, और वो सारी माताएं शाम को मार्केट, और वहां से बैग भर भर के ले आ रही है, अपनी ननद, अपनी बहू, वो सबके लिए पैसे है उनके पास, और यहां हमारे पास कुछ नहीं, हम तो बहुत गरीब है। उसके बाद के, कीपिंग चार्ट, अपना चार्ट खुद बनाना है और खुद रखना है, उसको मेंटेन करना है, हमारे चार्ट में, हमारे रजिस्टर में कहीं काला दाग ना हो, अपना एक दृश्य क्रिएट करना है कि मैं इस समय अभी के अभी भगवान के सामने जाकर प्रस्तुत हो जाऊं। बाबा ऐसा तो नहीं कहेगा कि बच्चे मुझे तुमसे बदबू आ रही है, हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे में विकार है और शिकार के संकल्प है। उसके बाद एल, लव फॉर वन बाबा, एक बाप से ही प्यार बस, बाकी सबसे कौन सा सौतेला प्यार, ऊपर ऊपर का पीठ पे हाथ घुमा देना उसके, बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान का प्यार कैसा होना चाहिए, दांत के दर्द की तरह, टूथेक। दांत का दर्द हुआ है किसी को? कईयों को हुआ होगा। दांत का दर्द होने के बाद में दर्द की गोली न लो, सारा दिन भर वो दांत याद आते रहता है। भोजन बना रहे, ध्यान सारा दांत की तरफ है, किसी से बात कर रहे, ध्यान सारा दांत की तरफ है, दिन भर खींचते रहता है। उसी तरह परमात्मा याद हो, दांत के दर्द की तरह दिन भर खींचता रहे। संसार में सब कुछ कर रहे, मन उधर लगा है, तन यहां मन वहां। उसके बाद में एम, मुरली, चिंतन, रोज की जो मुरली है उस पर टाइम देना है, टाइम निकालना है, चार बातें ढूंढनी है उसमें से, शब्दार्थ, शब्द का अर्थ क्या है, वाक्यार्थ, पूरे वाक्य का अर्थ क्या है, गुणार्थ, उसका गुह्य अर्थ क्या है, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, गुणार्थ, भावार्थ, भाव क्या है, भगवान जो कह रहा है इस शब्दों के भाव क्या है, कुछ तो गहरे भाव है। आज सुबह की साकार मुरली में एक वाक्य है, बाप बच्चों को देखते हैं तो बच्चों के पाप कटते हैं। कितना पावरफुल वाक्य है, जब भगवान हमें देखता है तो केवल उसकी दृष्टि मात्र से, आज की मुरली में चौथी या पांचवी लाइन ऊपर से, जब बाप बच्चों को देखते हैं तो बच्चों के पाप कटते हैं, तो कितना ज्यादा देर उसको देखना चाहिए, और कैसे देखना है जो भी बताए ना, कैसे देखना है, आके फाड़ फाड़ के देखना है, आंखें बंद करके रहोगे तो, कुछ दिन पहले वरदान प्रश्न था ना, सारा चोरी हो जाएगा तुम्हारा माल, दुकान में कभी आंखें खोल के बंद करके बैठते हैं क्या, सारा माल चोरी हो जाएगा, माया चोरी कर चली जाएगी। उसके बाद एन, एन अर्थात नो, एक अपनी डायरी में सब लोग लिख के रखेंगे ऊपर, बाबा ने मना किया है, बड़ा पावरफुल वाक्य है। लंबी लंबे बातें कर रहे हैं फोन से, ऐसे ऐसे YouTube में जाके वीडियोस देख रहे हैं, बाबा ने मना किया है, ऐसी ऐसी किताबें पढ़ रहे, अश्लील साहित्य पढ़ रहे, अनैतिक संबंध बढ़ा रहे हैं, सड़क पर चलते हुए दृष्टि शरीर की ओर जाती है, शास्त्रों में लिखा है सन्यासी के लिए, ये दोनों के लिए बहन या भाई, पर उसमें भाइयों के लिए लिखा है, अगर कोई स्त्री देखती है उसकी तरफ एक बार देखना स्वाभाविक है, नेचुरल, और बहनों के लिए भाई, दूसरी बार उसी को मुड़कर देखना इच्छा है, और तीसरी बार उसी को मुड़कर देखना वासना। नो, एन, उसके बाद ओ अर्थात ऑब्जर्विंग श्रीमत, श्रीमत का पालन, उसके बाद में पी अर्थात प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, उसके बाद क्यू अर्थात क्वालिटी, जो भी काम करे वो कैसा हो, क्वालिटी वाला हो, मन से किया हो, ऐसा नहीं ऐसे ऐसे दिखावे के लिए कर लिया, किसी को ऊपर ऊपर से कर लिया और छोड़ दिया। आर, संबंध, कैसे हो संबंधों में, क्या हो, मिठास हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताया, न्यारापन, प्यारे तो हो, प्यारे बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, न्यारे बनने का पुरुषार्थ है। बाबा सबको इतना प्यारा क्यों है, क्योंकि वो डिटैच्ड है। भगवान को आपने देखा होगा अव्यक्त बाप दादा डायमंड हॉल में कितनी बार आए, बाबा की मूवमेंट्स कितनी कम है, दादियों को थोड़ा सा ऐसा कर लेगा बस हो गया, हाथ भी नहीं लगाता है किसी को ज्यादा, कितना डिटैच्ड है वो, अपने शरीर से भी डिटैच्ड है और दूसरों के शरीर से भी डिटैच्ड है। इसलिए वो इतना प्यारा है क्योंकि उसमें वो डिटैचमेंट का सागर है, न्यारेपन का सागर, निर्मोह का सागर है वो। इसको भी लिख के रखना है अपनी डायरी में, ये उसकी नई महिमा है, न्यारेपन का सागर और निर्मोह का सागर और साक्षी का सागर है वो, और धैर्य का सागर है। उसके बाद एस साइलेंस सॉलिट्यूड, उसके बाद टी ट्रस्टी, उसके बाद यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल वे, वी विजिटिंग अदर सेंटर, यू डब्लू वॉश, एक्स एक्सरे, वाई योगा ट्वाइस अ डे, और जेड अर्थात झील, झील मतलब उमंग उत्साह। जो भी करो वो कैसे करो, खुशी खुशी से करो, नाचते हुए करो, उमंग उत्साह से करो। अच्छा, ओम शांति।